मित्रों, शुभ संध्या। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम इस सुंदर भजन को सुनते हैं, प्रभु हम सोच रहे हैं कि आप समीप हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि हमें अपने बालकों की नाई स्वीकार करेंगे। प्रभु हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा करेंगे और हमें अपनी आशीषें देंगे, जैसे कि हम लोगों की आवश्यकता है। और इस महान घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं, हम प्रति वर्ष देख रहे हैं कि संसार कैसे अंधकार और अंधकारमय होता जा रहा है, और प्रभु का आगमन चमकदार और चमकदार होता जा रहा है, जैसा कि वो स्वयं को व्यक्त करता है अपने वचन में और अपने प्रकटीकरण में। प्रभु हम आज रात्रि फिर आ रहे हैं इस सभा को करने के यत्न में, और तुझसे प्रार्थना करने कि प्रभु हमारे लिए इस पुस्तक की तीसरी मोहर को खोल दें, कि ये हमें मालूम हो सके, कि हम जान जाएं कि हम क्या करें और कैसे जिएं और कैसे एक अच्छे मसीही बने। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक जो मसीही नहीं है, आज रात्रि उसको ये अनुभव कराएंगे कि उन्हें तेरी आवश्यकता है, इसे प्रदान करें। और स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक नया जन्म प्राप्त मसीही इस बात को अनुभव करेगा कि उसे पहले से अधिक समीप जीना चाहिए, ताकि हम मसीही प्रेम और विश्वास की एकता में हो जाएं। प्रदान करें कि हर बीमार व्यक्ति जो हमारे बीच में है, आज रात्रि चंगा हो जाए। प्रभु, वो तेरी आवश्यकता को अपने में अनुभव कर सके। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर चीज को जो यहाँ की और कहीं जाए, आपके सम्मान और महिमा में आशीषित करेंगे। यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आज रात्रि फिर से यहाँ एक साथ जमा हुए हैं, सप्ताह में बुधवार की रात्रि में। और आज रात्रि प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं कि आपकी आशीषों के महान वर्षा पर, जो उसके वचन पर हो। हमेशा के समान मैं आज अध्ययन कर रहा था और बातों पर सोचने का यत्न कर रहा था कि कहने के लिए क्या अधिक उपयुक्त होगा, और बातें कि इसे कैसे कहें, और प्रभु पर निर्भर कर रहा कि मुझे इसका अनुवाद और अर्थ बताएं, और ये वचन जो लिखे हैं, और इस सप्ताह जो आपने हमारे लिए किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, ताकि हम इन मोहरों को खोलते हुए, और संभवतः ये एक अच्छी बात होगी यदि रविवार प्रातः, आप जानते हैं, बहुत सी बार हम नहीं चाहते कि गलत समझा जाए, परंतु आप जानते हैं, आप ये उस तरह से होता है, और इसलिए संभव है रविवार प्रातः यदि जिनके प्रश्न उनके मस्तिष्क में इस संबंध में हैं, लिखकर यहाँ मंच पर शनिवार रात्रि को दे देंगे, और ताकि मैं देख सकता हूँ कि ये क्या है, और फिर रविवार प्रातः मैं उत्तर देने का यत्न करूँगा। प्रभु ने चाहा, मैं सोचता हूँ ये अच्छा रहेगा, बजाय कि जो हम योजना बना रहे थे, क्योंकि कभी कभी ये गलत समझ लिया जाता है, आप जानते हैं, और इस प्रकार से मुझे मिल जाएगा, ये अधिक अच्छा रहेगा कि मैं इसे सीधे सीधे लूं, आप जानते हैं, ये वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी, अब आज किसी ने फोन करके कहा, जिसने फोन किया वो जानना चाहता था कि यदि ये सही था कि जब उठा लिया जाना होगा तो जेफरसन विले से एक और एक न्यूयॉर्क से, और बाकी वे सागर पार से होंगे, इसलिए देखिए ये गलत समझा गया। फिर किसी ने कहा कि शनिवार रात्रि यदि प्रभु हमें अंतिम मोहर देता है तो यीशु यहाँ रविवार सुबह होगा, समझे, इसलिए ये एक अब देखिए, आप नहीं जानते, ये ऐसा नहीं है, और आप नहीं, ये नहीं है, हम नहीं जानते। यदि कोई आपको बताता है कि वे जानते हैं कि वो कब आ रहा है, आप जानिए वे आरंभ से ही गलत हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता, परंतु हम जीना चाहते हैं आज जैसे कि ये अभी है। अब मैं एक मिनट के लिए आपको एक प्रकार से घुमाना चाहता हूँ, इसलिए तैयार रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु अब से 3 मिनट से कम समय में आएगा अपने समय से। अब जानते हैं ये कितना लंबा होगा, लगभग 35 वर्ष, 1000 वर्ष केवल एक दिन उसके साथ आपने देखा। इसलिए जब आप सुनते हैं पीछे चेला कहता है समय निकट है, यहाँ पर समय निकट है, चेले ने प्रकाशित वाक्य में कहा, अब जानते हैं कि ये कितना लंबा समय है, ये नहीं था, ये बस परमेश्वर के लिए बीता कल, यहाँ तक कि अभी दो दिन भी नहीं। अब देखिए, यदि ये 3 मिनट है, उसके आगमन में 3 मिनट से कम है, देखिए ये लगभग 30 वर्ष के होंगे हमारे लिए, या कुछ इसी रीति से, और देखिए कैसे उसके लिए 3 मिनट क्या होंगे, वो पहले ही उठ चुका है आने के लिए। इसलिए हम आप कभी कभी जब आप यहाँ पढ़ते हैं, वो वचन की भाषा में बोल रहा है, देखिए हमारे अनुसार नहीं। और यदि मैं जानता हूँ कि वो कल रात्रि आ रहा है, कल रात्रि, कल मैं अध्ययन करूंगा और उससे मांगूंगा कि चौथी मोहर के लिए मुझे संदेश दे, और मैं यहाँ आऊंगा और इसका वैसे ही प्रचार करूंगा, समझे। मैं हर दिन वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँगा, यदि वो आता है, और मैं कोई और अच्छा स्थान नहीं जानता कि कर्तव्य स्थल से उठाया जाऊं। देखिए, ठीक कार्यस्थल से, इसलिए जब तक वो आता है हम चलते रहें। कभी कभी हम पढ़ते हैं और अब वास्तव में चौकन्ने रहें, और जब आप पढ़ते हैं तो टेपों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये आपको टेप पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पीछे वे टेप चला रहे हैं और वे वास्तव में अच्छे और स्पष्ट हैं, इसलिए ये आपको वहाँ से स्पष्ट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज रात्रि अब हर कोई प्रेम में मसीह के साथ है और सब उससे प्रेम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कभी लोगों को क्या भ्रमित करता है, कोई जो भीतर आता है और सभा का पहला भाग नहीं ले पाया, आप देखिए तब वे भीतर आते हैं और आपको पिछला उल्लेख करते हुए सुनते हैं, पिछले कुछ पर टिप्पणी, और वे तब उसे लेते हैं कि क्या कहा और पहला भाग नहीं ले पाए, तो ये सब उन्हें चकरा देता है। अब आप देखिए तब वे सोचते हैं कि कुछ भिन्न कहा गया था, परंतु ये नहीं है। इसलिए आपके पास प्रश्न है जो आप नहीं समझते, तो बस एक कागज के टुकड़े पर लिखें, इसे अब से और शनिवार रात्रि के बीच वहाँ अंदर रख दें, और रविवार की प्रातः मैं कोशिश करूंगा कि यदि ये थोड़ा सा उलझाने वाला है, आप कहते हैं भाई मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, मैं इसे नहीं समझा, आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है, तो फिर मैं आपको रविवार प्रातः उत्तर देने की कोशिश करूंगा, प्रभु ने चाहा। अब आज रात्रि हम फिर इस पुराने धन्य वचन से पढ़ने जा रहे हैं, छठवें अध्याय में, और आज रात्रि हम तीसरी मोहर से आरंभ करेंगे, और ये पांचवा और छठा पद। और कल आने वाली रात्रि हम 4 घुड़सवारों को बंद करते हैं, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार यहाँ तक कि आज प्रातः लगभग मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गया और चीजों के हलचल से पहले प्रार्थना में गया और सारे दिन प्रार्थना करता रहा, परंतु आज प्रातः जल्द ही पवित्र आत्मा जहाँ मैं था आया, और ऐसे ही स्पष्ट जैसे कुछ भी मैंने दूसरी वाली मोहर को खुलते देखा, बिल्कुल ठीक। अब वो मेरी सुनता है, मैं जानता हूँ, और मैं बहुत ही आभारी हूँ। अब आप इस बात को याद रखेंगे कि कुछ हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। देखिए कुछ घटित हो रहा है। मैं इस कलीसिया को एक बार परखना चाहता हूँ और देखूँ कि ये कुछ समझ सके हैं इसके पहले कि ये वास्तव में घटित हो। अब स्मरण रखें मैंने आपको क्या बताया, और अब प्रभु हमारी सहायता करे। अब 5वां पद, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी भूमिका लें और मोहरों पर जो हम ले चुके, क्योंकि जैसे कलीसिया युगों में क्यों हम भूमिका देने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार से एक दूसरे को ढांकती हैं, जब तक कि आप वचन में युग वास्तव में इस प्रकार से हैं, एक दूसरे को ढांपता है इस प्रकार से, जैसे डंडे वाली सीढ़ी पे चढ़ना, और बल्कि सीढ़ी चढ़ना एक दूसरे को नीचे करता है और इस प्रकार से वापस आता है जैसे आप ऊपर कदम रखते हैं। अब ये मोहरें, ये मोहर बंद छुटकारे की पुस्तक है, हर कोई इसे समझता है, और ये पुस्तक 7 मोहरों से बंद है, ये 7 मोहरों से बंद पुस्तक है, समझे। और अब याद रखें, जैसा कि हमने आपके सामने इसका चित्रण किया है और यरमिया और सब से इसे लिया है, अब वे जब उनके पास था उन्होंने इस प्रकार से लिखा उस लेख के टुकड़े पर या एक कागज बल्कि यानी कागज पर नहीं परंतु ये खाल थी और उन्होंने इसे इस प्रकार से लपेटा। अब वो और इसका सिरा इस प्रकार से छूट गया, ये सूचित करता है कि वहाँ क्या है। अब अगले वाले को उसी स्थिति में रखकर उसी प्रकार से लपेटते हैं, इस प्रकार से लपेटते हैं और फिर यहाँ अंत में ये इस पर से फटा हुआ है और दूसरा वाला छूट गया। ठीक है, ये सात मोहरों से बंद पुस्तक थी। अब इन अंत के समय तक ऐसी पुस्तक नहीं थी, पुराने समय में ये लिपटे हुए थे, इन्हें लपेट दिया गया था और तब जब वे विषय को चाहते या कोई चीज, जैसे कि यदि बाइबल लिपटी हुई हो, आप यशाय की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ यशाय तक घुमाएंगे और इस प्रकार से लिपटे हुए को खोलते जाएंगे और इसे पढ़ते हैं और ये छुटकारे की सात मोहरों से बंद पुस्तक है। और अब हम पाते हैं कि मेमना बाहर आता है और उसके हाथ से पुस्तक लेता है जो सिंहासन पर बैठा है और मोहरों को तोड़ता है और खोलता है लोगों के लिए, मोहरों को खोलता है और चार जानदार वहाँ बैठे हैं। ये हमने कलीसिया कालों में लिया है, वही चार पशु, आप इन सबको वचन में से होते हुए देखते हैं और ये वही हैं जो इन मोहरों की टूटते हुए घोषणा करते हैं। अब हम देखते हैं ये छुटकारे की पुस्तक है और फिर हमने वापस जाकर छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी को लिया और देखते हैं कि उसका क्या कार्य था और इन सारे वर्षों में मसीह छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी का काम कर रहा है। अब जितने ये समझते हैं आमीन कहें। वो छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी का काम कर रहा था, परंतु एक समय आएगा कि जब छुड़ाने का काम पूरा हो जाएगा और जब छुड़ाने का कार्य पूरा हो जाएगा तब वो परमेश्वर के सिंहासन को छोड़ देता है जहां वो अब बैठा है, परंतु वो उसका सिंहासन नहीं है। वो जो जय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। ये उसका सिंहासन नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर से संबंधित है, मसीह मेमना ये उसका नहीं है, वो अवतरित परमेश्वर है, देखिए जो कि वही परमेश्वर है अवतरित हुआ। अब वो सिंहासन से उठता है, पहले वो घोषणा की गई कौन आने के योग्य है और कि इस छुटकारे की पुस्तक को ले। देखिए, छुटकारे की पूरी योजना के लिए आदम से, वो सब जो आदम ने खोया, आदम तक कुछ नहीं खोया था और आदम के बाद पृथ्वी पर सब खो गया और सृष्टि की हर चीज जो पृथ्वी पर थी खो गई थी और हर चीज जो आदम के साथ थी गिर गई, उस गहरी खाई को पार कर दिया जिससे कोई वापस नहीं आ सकता था, कोई विधि नहीं थी। मनुष्य जब उसने पाप किया उसने अपना मार्ग छोड़ दिया, उसने अपनी वापसी का मार्ग नहीं छोड़ा। जब ये प्रश्न पूछा गया यूहन्ना प्रकाशन वाला, वो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना दर्शन में था और ये देखा और वहाँ स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं था या कोई भी यहाँ तक कि योग्य भी नहीं था कि इस पुस्तक की ओर देखे, समझे। अब जरा इस पर विचार करें। तब मेमना सामने आता है और वो पुस्तक लेता है। अब यूहन्ना से कहा गया था कि और ना रोए, उसने कहा देखो यहूदा का सिंह जयवंत हुआ है और वो पुस्तक ले सकता है और इसे खोलता है। इसलिए वो सिंह को देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने एक मेमना देखा, प्राचीन ने पुकार कर कहा एक सिंह जयवंत हुआ है, परंतु जब वो आया और देखा ये एक मेमना था सिंहासन से बाहर आ रहा था। अब उसने इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, क्यों? वो वहाँ पीछे अपना बिचवाई का कार्य कर रहा था, वो लोगों के लिए लहू बहा रहा था, लोगों के लिए बिचवाई कर रहा था, जब तक कि अंतिम प्राण जो कि मेमने के जीवन की पुस्तक में पृथ्वी के रचने से पहले था अंदर आ जाए। अब वहाँ बहुत से होने जा रहे हैं और यही है बस, दूसरे वहाँ आना भी नहीं चाहते, उनकी वहाँ अंदर आने की इच्छा भी नहीं है। और इसलिए तब जब अंतिम प्राण अंदर आ जाता है तब छुटकारे का समय समाप्त हो गया, तब मेमना अपने अधिकार का दावा करने के लिए अंदर आता है जो उसने छुड़ाया है। पृथ्वी और सारी चीजें उसकी हैं, समझे? उसने इसे अपने ही लहू से छुड़ाया है। और जब वो इस पुस्तक को लेने आता है कि इसे खोले, क्यों? मेरा वे यूहन्ना फिर और नहीं रोया, और उसने देखा ये मेमना एक घात किया हुआ मेमना था, ये पहले ही मारा जा चुका है, परंतु ये फिर से जी उठा था। और अब हम पाते हैं कि ये घात किया गया मेमना लहूलुहान मेमना है, सारा लहूलुहान ये घात किया गया है। इसके घात किए जाने के बाद ये फिर से जीवित हो उठा था, ये सिंहासन पर बैठा था, कहे कि सिंहासन में पीछे की ओर इस प्रकार से उन सब प्राणों के लिए बिचवई कर रहा था जो आएंगे। तब जब अंतिम वाला यहाँ था और ये पूरा हो गया, परमेश्वर अब भी छुटकारे की पुस्तक को पकड़े हुए है, समझे? अब वो बस निकट कुटुम्बी का कार्य कर रहा है, जैसे बोआज गया और रूथ बस बैठी हुई थी वहाँ, जब तक कि बोआज, मेरा अर्थ बोआज ने किया निकट कुटुम्बी छुड़ाने वाले का काम। अधिक समय नहीं हुआ, आपको याद है मैंने प्रचार किया, रूथ शिला बीन रही है, और रूथ उसने जो भी किया वे आगे और अंतिम बात रूथ प्रतीक्षा कर रही है। याद है मैंने कैसे कलीसिया के प्रतीक में किया? जब बोआज निकट कुटुम्बी छुड़ाने वाले का कार्य कर रहा है, उसने किया, उसने अपना जूता फेंका और एक गवाही दी और नियोमी को छुड़ा लिया, और इससे होते हुए रूथ को छुड़ा लिया। अब इसलिए रूथ केवल प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि वो परिश्रम कर चुकी है, उसने वो सारी चीजें कर ली हैं, परंतु अब वो प्रतीक्षा कर रही है। और तब जब कलीसिया प्रतीक्षा कर रही है, विश्राम कर रही है, उनमें से बहुत से, उनमें से अधिकांश भूमि की मिट्टी में है, जबकि वो छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी का कार्य कर रहा है। अब भी संसार बुरी दशा में होता जा रहा है, और पाप, बीमारियां और परेशानियां और मृत्यु और दुख बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष और स्त्रियां ईश्वर रहित मर रहे हैं, कैंसर उन्हें खा रहा है, और सब बातें। जब वे उपयुक्त पर्याप्त विश्वास वहां पहुंचने के लिए नहीं ले सकते और उसको थामे रहें। अब ध्यान दें, परंतु तब इस सब के पूरा हो जाने के बाद, उसके बिचवाई के हो जाने के बाद, वो सामने आता है, उसके हाथ से पुस्तक लेता है, और तब यूहन्ना और स्वर्ग में सारी चीजें और वेदी के नीचे सारे प्राण चिल्लाना आरंभ कर देते हैं, हम इसे फिर से छठवीं मोहर में ले लेंगे, और कैसे आनंदित होते हैं, और वे प्राचीन गिर पड़ते हैं और संतों की प्रार्थनाएं उंडेल देते हैं, और वेदी के नीचे के सारे प्राण चिल्ला पड़े, तू ही केवल योग्य है क्योंकि तूने हमें परमेश्वर के लिए छुड़ा लिया, और हम पृथ्वी पर वापस जा रहे हैं कि राजाओं और याजकों का जीवन जिए। ओ, वहाँ एक महान था, और यूहन्ना ने कहा, हर चीज जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी के नीचे है, हर चीज को इस विषय में परमेश्वर की महिमा करते सुना। यूहन्ना ने अपना नाम वहाँ देख लिया होगा, आप जानते हैं, उस सारे समय में। तब उसने कहा, वो छुटकारे की पुस्तक को लेने के योग्य है। अब इसका न्याय से कोई मतलब नहीं, ये छुड़ाने वाले की है, और इसने छुड़ाने का कार्य कर दिया है। अब वो कलीसिया को दिखाने जा रहा है कि उसने क्या किया। आमीन, समझे? तब उसने लिया, परंतु पुस्तक बंद है, कोई भी कुछ नहीं जानता। वे जानते हैं कि ये वहाँ छुटकारे की पुस्तक है, परंतु इसे अंत के दिनों में प्रकट होना है। प्रकाशित वाक्य 10 के अनुसार सातवां दूत इसका संदेश देने जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया, सातवीं कलीसिया के दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर के सारे भेद उसकी आवाज के साथ समाप्त हो जाएंगे। तब इसके प्रकट होने के पश्चात स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर आया जो कि मसीह था। अब इसमें रखें, ये दूत यहाँ पृथ्वी पर है, एक संदेशवाहक। मसीह नीचे उतरकर आता है, आप इसे प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में देखते हैं। एक पांव पृथ्वी पर, दूसरा समुद्र पर रखा, मेघ धनुष उसके सिर पर है, आंखें जैसे और पांव आग के समान और आदि आदि, और अपना हाथ उठाकर अपनी शपथ खाता है जो सदा सदा जीवित है, सिंहासन पर है, अब तो समय और ना होगा। और जब उसने ये शपथ खाई, सात गर्जनों ने अपनी आवाज दी, और लेखक जो यूहन्ना जब ऊपर उठा लिया गया तो उसने देखा, लिखना था, उसने ये लिखना आरंभ किया, उसने कहा, इसे मत लिख, क्योंकि ये ना लिख, ये एक, उसने कहा, इसे बंद कर दे, इसमें क्या है, इसे मोहर बंद कर दे, इसे मत बोल, देखिए इसे प्रकाशित होना है, परंतु ये यहाँ तक कि शब्द भी नहीं लिखा है। और तब जब वे मोहरों को खोलने लगा, हम पाते हैं ये सब एक समस्या है, समझे। जब उसने पहली मोहर खोली, उसने सोचा अब ये यहाँ करने जा रहा है और ये आएगा, अमुक अमुक सिंहासन को लेगा और इसे करेगा और वो करेगा। परंतु जब ये था यहाँ, वो चला गया एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ और उस पर एक घुड़सवार है, ठीक है, उसके हाथ में एक धनुष था और उसे थोड़ी देर के बाद एक ताज दिया गया। उसने कहा बस। और मेमना फिर से घूमा और दूसरी मोहर खोली और यहाँ एक काला गया, एक लाल घुड़सवार, और उसके पास एक तलवार दी गई और वो एक युद्ध करने जा रहा है और बड़ी सामर्थ्य दी गई और शांति को पृथ्वी पर से उठा ले और एक दूसरे का वध करें। वो एक प्रकार का अब भी एक भेद भरी बात है, क्या ये नहीं है। जब इसने इसे खोला और तब बढ़ता रहा और कहा, उस दिन इन गर्जनों के थोड़ा सा पहले यहाँ सारे भेद प्रकट कर दिए जाएंगे। अब देखिए, तब हम पाते हैं, जैसा कि हम इन युगों में अध्ययन करते आ रहे हैं, हमारे पास सुधारक थे, न कि भविष्यद्वक्ता, सुधारक। और प्रत्येक कार्यस्थल अपना ही करता है, अपना ही कार्य। जैसा कि एक मनुष्य जो कि टेलीफोन को चलाने वाला होता है, सही में वो बिजली का कार्य करने वाला नहीं है, वो इसमें छोटा मोटा कार्य कर सकता है। और जैसे कि वो लाइनमैन है, भाई निश्चय ही वो एक व्यक्ति खंबे का खड्डा खोदने वाला, और उसने कभी लाइन का काम नहीं किया है तो अच्छा है वो इससे अलग रहे, परंतु वो थोड़ा सा जोड़ तोड़ का कार्य कर सकता है या ऐसे ही कुछ। परंतु जब वास्तविक चीज अंत के दिन में प्रकट की जाने वाली है, कलीसिया का अंतिम भाग, जबकि उसने कहा कि वो हमारे पास वचन के अनुसार भेजेगा, और हमने इसे पूरी रीति से खोज लिया है कि उसने एलिया के आत्मा की भविष्यवाणी की है कि वो किसी व्यक्ति में वापस आएगा। अब मैं सोचता हूँ ये स्पष्ट हो गया है, और हम उसके घटित होने की राह देख रहे हैं। कहीं एक अभिषिक्त व्यक्ति इन अंत के दिनों में खड़ा होना है। अब आप बहुत से हट धर्मिता और बहुत सी बातें सुनेंगे, परंतु ये केवल कोशिश की, ये शैतान है जो कि वास्तविकता से हटा दे जबकि वो यहाँ आए। परंतु ये सही में प्रमाणित होगा। आप जानते हैं एलिया कौन था, और उस पर ध्यान करें और आप जान जाएंगे। और तब जब वो अब चुने हुए जान लेंगे, न कि दूसरे, निश्चय ही नहीं करेंगे, वे इसमें चूक जाएंगे लाखों मील से, जैसे हम इस सब में से होकर निकले हैं और दिखा दिया कि वे कैसे यहुन्ना से चूक गए, कैसे वे एलिया से चूक गए, कैसे वे यीशु से चूक गए, कैसे वे सब पर चूकते रहे, और वे वही करेंगे क्योंकि बाइबल ने कहा वे होंगे, समझे। इसलिए तब उस समय में ये बहुत ही नम्र होगा, ये बहुत ही सादा होगा, ये होगा जिससे लोग इससे दूर हो जाएंगे, और ये उनके लिए बहुत ही साधारण होगा। हम पाते हैं और सदा जब लोग बुद्धिमान और तेज होते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो बस वे इस प्रकार के लोग चूकते हैं। अब जानते हैं, समझे, यीशु ने कभी भी इस प्रकार के लोगों को अपना चेला होने के लिए नहीं लिया। उसने अनपढ़ों, मछुआरों को लिया, कोई भी उनकी कलीसियाओं और चीजों से नहीं था, उसने साधारण से लोगों को लिया, चुंगी वालों को, किसानों, मछली वाले आदि आदि, और उसके कार्य को करें, समझे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कुछ नहीं है, तो वे उनमें से कुछ बना सकता है। जब तक कि वे जानते हैं कि वे कुछ नहीं है, तब परमेश्वर काम कर सकता है। परंतु जब वे सोचने लगते हैं कि वे कुछ जानते हैं, तो आप वो कुछ नहीं जानते जो आपको जानना चाहिए, बाइबल कहती है। और तब इस प्रकार से हम पाते हैं, और अब हम पाते हैं कि तब की ये भेदों को प्रकट हो जाना चाहिए, और क्यों नहीं ये दूसरे व्यक्ति वेस्ली, लूथर और वे महान सुधारक जो न्यायोचितता, पवित्रीकरण, पेंटिकॉस्टल युग को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ लाए, और दूसरी चीजें, वे इन संदेशों को क्यों नहीं समझने पाए, क्यों नहीं वे इन्हें पा सके, क्योंकि वे सुधारक थे, समझे। जैसे कि हम दूसरी ओर लें, लोग आए जो थे राजाओं के समान, उनके पास सामर्थ्य थी परंतु राजा नहीं थे, समझे। समझे, आपको बाइबल की किसी भी शब्दावली पर ध्यान करना है, समझे। अब ध्यान करें, न्यायोचितता का भेद पूर्ण भाग, पवित्रताई का भेद पूर्ण भाग, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का भेद पूर्ण भाग के ना समझ में आने वाले भागों के कारण, और क्यों, किस प्रकार से हुआ, क्या हवा ने सेब खाया था, अनार खाया, या कुछ और, समझे। सर्प का वंश क्या था, और क्या बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है या प्रभु यीशु मसीह के नाम में सही है, और ओ, वो सैकड़ों अनसुलझी बातें रह गईं, समझे। और तब इस अंतिम घड़ी में इस व्यक्ति को आना है, और बातों को प्रकट करना है वचनों को लेकर, ये सही प्रकार से प्रमाणित होगा। देखिए, जी हाँ श्रीमान, और वो अब कोई बड़ी महान चीज नहीं होगा। ये यहाँ बाइबल में इस प्रकार दिखाई पड़ता है, ये कोई महान चीज होगी। ये कितना बड़ा था जब यूहन्ना को यहाँ आकर बपतिस्मा देना था। अब जरा सोचें, नबी लोग पीछे भूत में यशाया, मलाकी और सारों ने इसके विषय में बोला जब वो आएगा, और जब वो आया अकेला पुराना अनपढ़ व्यक्ति, सारे चेहरे पर दाढ़ी और बाल चिपके हुए, कीड़ों के समान लटक रहे हैं और पुरानी भेड़ की खाल उसके चारों ओर लिपटी हुई है, बिल्कुल भी शिक्षित नहीं, कभी जीवन भर एक दिन के लिए भी पाठशाला नहीं गया जहाँ तक कि हम जानते हैं, समझे। और यहाँ वो जंगल से निकल कर आता है, यहाँ तक कि प्रचार मंच पर स्वागत तक नहीं हुआ। वहाँ यर्दन नदी पर खड़ा हुआ है और लोगों को प्रायश्चित करने के लिए बुला रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाइबल ने कहा उस दिन हर चीज इतनी महान होगी, यहाँ तक कि ऊंचे स्थान नीचे ना कर दिए जाएं और सारे नीचे स्थान ऊंचे किए जाएं। जी हाँ श्रीमान, और सारे उबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे। क्यों, मैं कल्पना करते हुए उन्हें देख सकता हूँ। सोचें, यूहन्ना बाहर आएगा या मसीह के आगे चलने वाला महान, और सारे रेगिस्तान को लेकर बराबर कर देता है और उसमें फिर से घास लगा देता है, समझे। और वे, मैं कल्पना करता हूँ, उन्होंने सब तय कर दिया था जैसे कि इस बारे में आज है, परंतु वो इतना नम्र था यहाँ तक कि चेले भी चूक गए। उन्होंने कहा तो फिर शास्त्र क्यों कहता है, यदि तू तो वहाँ बलिदान होने गया तो फिर शास्त्र क्यों कहता है कि एलिया को पहले आना है। उसने कहा वो तो पहले ही आ चुका और तुमने ये नहीं जाना, और मनुष्य का पुत्र वे वही चीज फिर करेंगे। परंतु यूहन्ना, उसने कहा उसके साथ वही किया गया था जो करने के लिए ठहराया गया, और उन्होंने उसके साथ वही किया जो करना ठहराया था, और कहा इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। क्यों, मेरा अनुमान है वहाँ सारे यहूदी जाति में से एक तिहाई ने भी कभी नहीं जाना कि यीशु मसीह पृथ्वी पर था। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा ही सुना कि कोई कट्टरवादी वहीं कहीं है, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बस चलता रहा। वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यही जहाँ मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ तक कि अब इसने ये नहीं कहा कि वो चुपके से आएगा, परंतु उठा लिया जाना चुपके से होगा। इसलिए यदि वो इतना छुपा हुआ था जब वो आया, तो उठा लिया जाना कितना अधिक अनजाना होगा, समझे। वे नहीं जान पाएंगे, सीधे सीधे वे कहेंगे भाई मैंने सोचा अब तो हमें उठा लिया जाना चाहिए और ये सारा न्याय पृथ्वी पर है। वो कहेगा ये तो पहले ही घटित हो गया और तुम्हें मालूम ना हुआ, समझे। ये भी ऐसे ही होगा जैसे चोर रात के समय में, जैसे कि एक पुस्तक मैंने एक बार पढ़ी थी, वो क्या कहलाती है, रोमियो और जूलियट, यही जो वो थी या कुछ ऐसे ही। उसने घर के एक और सीढ़ी लगाई और किसी प्रकार से मैं बहुत समय पहले, और आकर उसे ले गया और उसको रात के समय ले गया। अब ये इसी प्रकार से होगा और ये चला जाएगा, ना कि स्वर्गदूतों का झुंड नीचे बेलचों के साथ आएगा और कब्रों को खोदेगा। बाइबल ने कहा हम बदल जाएंगे इसके पहले कि हम पलक भी झपकें, पल भर में ये हो जाएगा इतनी जल्दी। बस कहें कि कोई गायब हो गया। अच्छा, मैं कल्पना करूंगा यदि आज हमारे सारे संसार में ढूंढें कि हर दिन पृथ्वी पर से 500 लोग गायब हो जाते हैं। देखिए, उन्हें इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम, वे आते हैं और गायब हो रहे हैं। ठीक वहाँ पर बहुत सारे उस उठा लिए जाने में नहीं होने जा रहे हैं। अब मैं आपको डराना नहीं चाहता, और मैं नहीं सोचता कि ये इस प्रकार से है, परंतु मैं बस आपको बताना चाहता हूँ उसने क्या कहा। और आप अपने में जानते हैं, जैसा कि ये नूह के दिनों में था जबकि 8 प्राणी जल के द्वारा बच गए, सारे संसार से 8 प्राणी जल के द्वारा बच गए। अच्छा, आप कहते हैं ओ प्रभु तो मुझे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये दर्शाता है कि आपके पास वो विश्वास नहीं है जिसकी आवश्यकता है। यदि वहाँ केवल एक ही जा रहा है तो वो मैं हूँ, आमीन, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, समझे। आपको इस प्रकार से विश्वास करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, मुझे होना है, मैं उसके इतने समीप रहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जब वो आता है तो वो मुझे लेने जा रहा है। मैं इसका विश्वास करता हूँ, ये ठीक बात है। यदि वहाँ कोई, यदि सब कोई इसमें चूक जाए, मैं वहाँ होने जा रहा हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, और मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ होने जा रहा हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। और मैं जानता हूँ कि मेरा प्राण और मेरा जीवन गवाही रखता है, और मैं हर दिन ऐसे जीने का यत्न करता हूँ कि वो आ रहा है। इसलिए मैं वही होना जा रहा हूँ। आपको इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए। यदि वहाँ आठ होने वाले हैं तो उन आठ में से मैं एक होऊंगा। 500 जा रहे हैं तो 500 में से मैं एक होऊंगा। दूसरे के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैं उन 500 में से एक, मैं एक होना चाहता हूँ। समझे? आपको इस प्रकार से याद रखना चाहिए। देखा? और यदि आप इस प्रकार से याद नहीं रखते हैं तो फिर आपके विश्वास में कहीं गड़बड़ है। देखा? तो फिर आप अभी भी निश्चित नहीं है कि आप बच गए हैं। आप बस ये अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा ना करें। ठीक है, हम इस मोहर में प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं क्या हम? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर रात्रि, मैं नहीं चाहता कि आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं कि मैं आपका समय ले रहा हूँ। हम थोड़ा सा जल्दी निकल सकते थे यहाँ कोई बहुत इन्हें प्रकट करने में। इन मोहरों को याद रखें, ये वास्तव में एक पद है। पहले में इसकी घोषणा की जाती है, दूसरे पद में लगभग सारी टिप्पणियां और आदि आदि इसको पढ़ते हुए या उनके विचार पढ़ते हुए, और मैंने सदा उन सबके समान विश्वास किया जो उन्होंने किया कि पहला घुड़सवार पहली कलीसिया थी। परंतु जब पवित्र आत्मा ने ये प्रकट किया तो ये इसके बिल्कुल विपरीत था, और इसलिए ये तब कुल मिलाकर ये है, ये दिखाता है कि ये क्या है। और तब मैंने कोशिश की, अब ये मेरे लिए बहुत ही पवित्र है। यही कारण है कि बजाय मैं इन प्रश्नों के उत्तर दूं और इसे लूं, हर कोई इसे स्पष्ट जानता है और टेपों पर भी, कि वे अब इसे समझ जाएंगे। समझे? मैंने थोड़ी देर इस पर बोलने की कोशिश की रात्रि में कि इसकी भूमिका पर लोगों को लाऊं, हड़बड़ और धक्का मुक्की, और आपको ये नहीं करना चाहिए। समझे? परंतु जब ये होता है, ये मनुष्य है और ये यहाँ पर गर्म है, और आप लोग बेचैन हैं, परंतु आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छा जो मैंने कभी देखा लोगों का व्यवहार इस कलीसिया में, जो इस सभा में रहे हैं और शांत बैठे रहे। माएं अपने बालकों को जब कभी भी वो रोए नर्सरी में ले गए, और हर चीज बहुत ही बढ़िया। परंतु मैंने भूमिका बांधने की कोशिश की जब तक कि मैंने अभिषेक के आत्मा को अपने ऊपर अनुभव नहीं किया कि इन शब्दों को कहूं, बताऊं कि मुझ पर ये क्या प्रकट हुआ है। और तब यदि मैं ये कहीं पर कर रहा हूं, यदि मैंने यहां पर गलती की, निश्चय ही यहां सब लोगों के सामने वो मुझे इसके लिए सही करेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये मैं इसे ठीक चाहता हूं। कोई आवश्यकता नहीं कि जो आप कल्पना करते हैं वो लें, कुछ तो सही है। और मैं वो चाहता हूँ, हम चाहते हैं परमेश्वर हमें वो दे जो सही है। इसलिए अब हम इन घोड़सवारों को लेंगे जैसे जैसे ये आते हैं। अब पहला घोड़ा, और हम अनुभव करते हैं कि ये मसीह विरोधी था जो आगे बढ़ा, और तब बीती रात्रि हमने पाया कि वो वही व्यक्ति जो मसीह विरोधी के समान आगे बढ़ा, एक सफेद घोड़े के समान। बीती रात्रि हम उसे तलवार के साथ पाते हैं सवारी करते हुए लोगों को मार रहा है। अब वहाँ सदा स्वाभाविक और आत्मिक है, और कलीसिया के लिए मैं प्रतिछाया में चाहता हूँ। इसके पहले कि हम इस मोहर के खुलने में जाएं, जो कि उसने मुझे दिया, मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ मेरे पास बहुत से पवित्र लेख हैं, इसके साथ ये आठ पन्ने, और जैसा कि मैंने इसका उल्लेख किया, ध्यान दें, मैं कलीसिया की एक प्रतिछाया देना चाहता हूँ और इसको इतना स्पष्ट कर दूँ कि आपको ये दिखाई पड़ेगा। समझे? अब अदन की वाटिका में एक स्वाभाविक दुल्हन थी। पिछली रात्रि याद है, वो स्वाभाविक दुल्हन आदम की प्रिय थी, अभी तक उसकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि उसने उसे अभी तक पत्नी करके नहीं जाना था। जैसे कि मरियम यूसुफ की पत्नी थी, परंतु उसने उसे अभी तक नहीं जाना, वो एक बालक के साथ पाई गई। समझे? अब इसके पहले कि आदम अपनी पत्नी को जानता, वो बस उसकी दुल्हन थी। ठीक है, और हम पाते हैं कि परमेश्वर वो अदन की वाटिका में गिर गई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को थामे रहने में असफल रही। अब वो जानता था कि शैतान उनके बीच में छोड़ा जाएगा, इसलिए उसने उन्हें एक स्थान दिया कि उसके पीछे रहें, उन्हें सुरक्षित किया। भाई, कौन सबसे अच्छा स्थान जान सकता है कि सुरक्षित रहे सिवाय परमेश्वर के, यदि वो अपने ही बालकों की रक्षा करने का यत्न करता है। यदि मैं अपने छोटे जोसेफ का ध्यान रखना चाहूँ, अच्छा है भाई हर चीज, और मुझे मालूम है कि इसका जीवन इस पर निर्भर करता है। क्यों? मैं चाहूँगा कि मैं इसे करने के योग्य था। अच्छा, यदि 40 फीट चौड़ी सीमेंट सरिया इस चीज को करेगा, ये मैं 90 फीट बनाता हूँ कि मैं निश्चित हो जाऊँ। और यदि मैं अपने छोटे लड़के के लिए सोच सकता हूँ, जो कि यदि उसका सांसारिक जीवन नष्ट हो गया था, मैं विश्वास करता हूँ कि बालक बच जाएगा, तो फिर परमेश्वर के लिए कितना अधिक अपने बालक के लिए जो कि अनंत में खो जाएगा, उसे किसके पीछे रखना चाहिए? उसने उसे अपने वचन के पीछे रखा। जब तक आप उस वचन में हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो, यही वचन है। इस प्रकार से हवा अदन वाटिका में घूमने फिरने के लिए निकली और सर्प के पास पहुंच गई, एक बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति, और वो और उसने आरंभ किया। वो अब दूसरी ओर था। परमेश्वर रहता, निवास करता, नम्रता में काम करता है, किसी दूसरे प्रकार से कभी नहीं, समझे? अब वो छोटी नम्र महिला वहाँ घूम रही थी और शैतान एक बुद्धिमान, चालाक, संवरा हुआ सा एक व्यक्ति, और वो उसे एक योजना बेचना चाहता था। जब तक, कोई मतलब नहीं शैतान कितना भी आसपास था, जब तक वो इस वचन के पीछे रुकी रहती वो ठीक थी, समझे? शैतान को जो चाहे करने दो, आप बस वचन के साथ बने रहें, जरा सा भी अंतर ना रखें। यदि वो कहता है क्यों आप तो बीमार हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, अच्छा तुम तो मरने जा रहे हो, वो मुझे फिर से जिला उठा खड़ा करेगा, उसने ये प्रतिज्ञा दी है। देखिए, वचन के पीछे बने रहें, बस मसीह स्वयं वचन पर वापस गया, ये लिखा है, समझे? वचन के पीछे बने रहें। परंतु हवा, वो एक प्रकार से सहमत होने लगी, परंतु वो पूरी रीति से कभी सहमत नहीं हुई। उसने केवल एक छोटी बात जो जिस पर सहमत हुई, और शैतान यही वो जो उससे करवाना चाहता था, उसने उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पीछे से हटा दिया तर्क के द्वारा। कभी भी परमेश्वर के वचन पर तर्क करने का यत्न न करें, बस इसका विश्वास करें, समझे? इसलिए उसने वहाँ से कदम बाहर निकाला, और इसके पहले आदम उसे पत्नी होने के लिए लेता, वो पहले ही शैतान के द्वारा दूषित कर दी गई थी। और वो, और क्या आपने ध्यान दिया, मसीह ने भी ठीक वही चीज की। अब छुटकारे के लिए परमेश्वर को वहाँ पहले होना था। क्या आपने ध्यान दिया, मरियम, इसके पहले कि यूसुफ उसके पास आता, पवित्र आत्मा ने उसे ले लिया, आमीन, समझे? यही जहाँ से छुड़ाने वाला आया। अब ध्यान दें, स्वाभाविक स्त्री गिरी और परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए मार्ग निकाला। यद्यपि वो गिर चुकी थी, उसने एक मार्ग बनाया। अब ये पृथ्वी पर पहली दुल्हन थी जो गिरी, इसके पहले उसका पति और वो ब्याहे गए। वो तर्क के कारण गिरी, बजाय इसके कि वचन के साथ बनी रहती, वो गिर गई, वो मृत्यु के लिए गिरी, अनंत अलगाव। अपने साथ उसने अपने पति को भी लिया, और हर चीज जो वहाँ पृथ्वी पर थी वो गिरी। अब परंतु परमेश्वर अनुग्रह से भरा, उसने उस स्त्री को छुड़ाने के लिए मार्ग निकाला, और अब उसने उसे प्रतिज्ञा दी, उसे बताया कि किसी समय भविष्य में सच्चा वचन उसके पास फिर से आएगा, सत्य का वचन उस पर प्रकट किया जाएगा। अब इसे स्मरण रखें, क्योंकि उसने मसीह की प्रतिज्ञा दी एक स्त्री से होते हुए, और मसीह वचन है। संत यूहन्ना 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हो गया, देखा, और हमारे साथ रहा, परमेश्वर हमारे साथ देह में रहा, वो वचन था। वचन से पहले वो एक विचार था, और विचार की सृष्टि होनी थी, ठीक है, परमेश्वर का विचार सृष्टि बन गया जब ये वचन के द्वारा बोला गया। यही जब उसने इसे आपको एक विचार के समान दिया, उसका विचार, और ये आप पर प्रकट किया गया, तब ये तब तक विचार है जब तक कि आप इसे बोल नहीं देते। यही कारण है मूसा प्रार्थना करने के लिए बाहर गया, वो अग्नि स्तंभ उसके चारों ओर था, और उसने कहा, जा और अपनी लाठी पूर्व की ओर कर, और कह डांसों को बुला, वहाँ डांस नहीं है। परंतु वो गया और लाठी को पकड़ा और कहा, डांसे हो जाएं। अभी तक कोई डांस नहीं थी, वापस चला गया। परंतु वे वचन परमेश्वर के विचार पहले ही बोल दिए गए, ये एक वचन है, अब इसे तो होना ही है। अब क्या आप नहीं देखते जहां यीशु ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, ना कि यदि मैं ये कहूं, परंतु तुम इस पहाड़ से कहो हट जा। और पहली बात मैं समझता हूं कि मूसा के समय में पुरानी बड़ी हरी डांस भनभनाने लगी, और थोड़ी देर के बाद वे 5 पाउंड प्रति वर्ग गज थी, समझे? वे कहां से आई होगी? वो परमेश्वर ने उनको रचा। क्या आप नहीं देखते कि कैसे आज रात्रि परमेश्वर इस संसार को नष्ट कर सकता है डांसों से? यदि वे चाहे तो भाई वो चांद तक डांसों का ढेर लगा सकता है। केवल एक चीज जिससे कर सके कि बस कहे डांसे चांद तक हो जाएं, बस यही सब कुछ होगा कि इसे कर दे। कोई रसायन या कुछ नहीं, वे बस बढ़ना आरंभ हो जाएंगी, बढ़ते बढ़ते, समझे। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। केवल एक चीज करनी है, बस बोल दे। ये ठीक बात है, वो सृष्टि करता है। अब यदि हम इसे जरा अनुभव करें कि वो कितना महान है, समझे। वो वही करता है जो वो चाहता है। वो वहाँ बैठकर लोगों को देखता है और ये थोड़े से पढ़े लिखे तेज बनते हैं और कोई परमेश्वर नहीं है और चीजें। ओह, क्यों ये फिर वैसा है जैसा वे बाबुल में थे, बल्कि बाबुल। अब हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने हवा से कहा कि बहुत लंबे समय के बाद वचन तेरे पास वापस आ रहा है। अब वो कैसे गिरी थी? मैं चाहता हूँ कि मेरी कक्षा ये कहे वो किस चीज से गिरी थी, वहाँ वो किस से गिरी थी? वचन। और परमेश्वर ने कहा कि वो उसे छुड़ाने के लिए मार्ग निकालेगा कि फिर से वचन पर लाए। ठीक है, लंबे समय के बाद वचन उस पर प्रकट किया जाएगा। ठीक है, अब वचन एक उद्देश्य के लिए आएगा। अब इसे कसकर पकड़ें, मैं क्या कह रहा हूँ। वचन उसके पास एक उद्देश्य के लिए आएगा, वो उसके छुटकारे के लिए था। ठीक है, परंतु जब तक उसके पास एक एवज में होगा जो करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि मूल वचन के लिए समय नहीं आया। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए। देखिए, उसने उसे बताया कि वचन उसके पास फिर से आएगा, परंतु उस समय तक उसने उसे उसके स्थान पर दिया जब तक कि समय नहीं आया। इसलिए उसने बलिदान दिए, एक विस्थापन उस लहू के लिए। अब बैलों, भेड़ों और बकरियों और चीजों का लहू, परंतु ये उसके पापों को नहीं हटा पाए, समझे। इसने केवल उसके पाप को ढांपा, ये इसे हटा नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, इसने इसे ढांपा। क्योंकि ये पशुओं का लहू था और पशु के लहू में पशु का जीवन होता है। ये मूल जब तक नहीं आता उसके स्थान पर था। अब अपने कोट चढ़ा लें, वास्तविक मनुष्य का लहू एक मनुष्य के समान होगा, अवतरित हो गया। परमेश्वर बिना काम इच्छा के कुंवारी से जन्म लेकर उत्पन्न हुआ। अब परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा लहू बन गया और व्यक्ति यीशु मसीह में अवतरित हो गया, वो बचाने वाला, बैलों और बकरों का लहू और आदि आदि। परंतु अब प्रतीक्षा करें, यहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कहते हुए कि वो यहाँ होगा जब ये आता है, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। अब यदि स्त्री का वंश आदम के समान आता या जैसे सर्प से होता हुआ आया और आदि आदि, तो ये तब भी पाप में बीज या वंश होता। यही कारण था कि यूहन्ना रोया। कोई भी मनुष्य नहीं था, क्योंकि कोई भी मनुष्य सारे के सारे पार निकल गए थे गड्ढे के दूसरी ओर, उस खाई के। परंतु एक समय आ रहा था जबकि पशु के लहू जो कि उसके स्थान में था हटा दिया जाएगा, जब वास्तविक अवतरित का लहू आया। परमेश्वर देहधारी हुआ और लहू, बाइबल ने कहा वो था। पहला तिमोथियस 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, ये ठीक बात है, कुंवारी से जन्म ने ये किया। अब भेड़ और बकरों का लहू, उसने पाप को ढांपा, परंतु इससे पीछा नहीं छूटा, क्योंकि यह पशुओं का लहू था। परंतु यही ठीक होना था, यही बदले में होना था, और निश्चय ही वे इस विस्थापन के अभ्यस्त हो गए थे और इसलिए वे इसे करते रहे। और जब वास्तविक प्रतिज्ञा का वचन यीशु मसीह में प्रकट हुआ, जो कि महान सृष्टि कर्ता परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ और स्वयं समर्थन प्राप्त किया परमेश्वर के जीवते वचन होने के द्वारा, ओह, उसने सिद्ध किया कि वो था, वो चीजों को बोलकर अस्तित्व में ला सका। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं या संसार में ऐसा कोई नहीं था जो ये कर सके। यहाँ पृथ्वी पर कुछ नहीं था जो सृष्टि कर सके सिवाय परमेश्वर के। शैतान सृष्टि नहीं कर सकता, वो जो सृष्टि किया हुआ है उसे दूषित कर सकता है, परंतु सृष्टि नहीं कर सकता। दूषित धार्मिकता पाप है, आप समझे मेरा क्या अर्थ है। झूठ क्या है? ये सत्य को गलत रूप में सामने रखना, समझे। व्यभिचार क्या है? वास्तविक सही व्यवहार को दूषित करना। पाप में हर चीज, पाप बस सत्य को दूषित करना है। अब वो सृष्टि नहीं कर सका, परंतु जब मसीह आया उसने सिद्ध किया कि वो सृष्टि करता है। एक लहू था जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप आइए कुछ मिनटों के लिए निकालें, जो कुछ भी है हम इस पर समय लेने जा रहे हैं। आज रात्रि में ये मुझे अधीर कर देता है। मैं सोचता हूँ कि हर कोई घर जाना चाहता है, आप जानते हैं, और इसलिए ये एक प्रेरित दो, और अब हम यहाँ देखेंगे कि ये सही है या नहीं कि उसने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर था। ठीक है, प्रेरितों के दो का निकालें। अब हम यहाँ पर 22वां पद लेंगे। पत्रस पेंतेकुस्त पर बोल रहा है, हे इसराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। एक मनुष्य जो प्रमाणित हुआ कि वो परमेश्वर तुम्हारे मध्य में था, उन कामों के द्वारा जो उसने किए, सिद्ध किया कि वो था। यहाँ पत्रस खड़ा हुआ सनहेदरिनों को बता रहा है। निकोदीमस इसी बात को जानता था। उसने कहा, रब्बी, हम सब जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इन कामों को जो तू करता है नहीं कर सकता जब तक कि वो परमेश्वर की ओर से ना हो। समझे, वे ये जानते थे, परंतु क्यों? अब ध्यान दें, अब हवा से इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, परंतु जब दुल्हन नीचे आई और इनकार कर दिया, जब वास्तविक वचन उसके पास आया, इसलिए स्त्री ने पहचानने से इनकार कर दिया, हिब्रू दुल्हन ने, क्योंकि वो परमेश्वर की दुल्हन थी। उसने उसे तलाक देकर छोड़ दिया। क्या ये ठीक बात है? वो परमेश्वर की दुल्हन थी। आप कहते हैं, भाई उनका अब तक विवाह नहीं हुआ था। ठीक बात है, परंतु यूसुफ ने पहले मरियम को छोड़ दिया। मरियम को छोड़ने जा रहा था इसके पहले कि उनका विवाह हुआ। समझे, उसकी उससे मंगनी हुई थी, और अब जब वो आया, वो वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी थी विवाह के लिए आया, उसने उसे उसके विस्थापन में लिपटा हुआ पाया। इतनी बुरी दशा कि वो वास्तविक प्रतिज्ञा को नहीं लिया जो कि की गई थी, वो वचन मसीह। संभव है आप समझ नहीं पाए। अब मैं इसे फिर से लूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। देखा, उससे प्रतिज्ञा की गई थी दुल्हन हवा से। छुटकारा देने वाला उसका छुटकारा देने वाला वचन होगा, और जब वचन आया, देहधारी हुआ, उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे एक विस्थापन दिए गए थे। अब इसे रखो, वे विस्थापन दिए गए कि बढ़ते रहें, जब तक कि छुड़ाने वाला नहीं आए, और जब छुड़ाने वाला आया तो वो विस्थापन के साथ टिके रहना चाहती थी और सत्य के वचन को अस्वीकार कर दिया। ये समझे, और ये इब्रानी दुल्हन थी। ऐसा ही उसने किया। दूसरी हवा दुल्हन के द्वारा सारे आत्मिक जीवितों की माँ। समझे, हवा का अर्थ सबकी माता, ये आत्मिक सारे जो जीवते हैं, हवा सबकी माता जो जीवते हैं। अब और जब वो इब्रानी दुल्हन के पास आया, वो सबकी माँ थी जो कि जी रहे थे, परंतु इसने इसको अस्वीकार कर दिया। शारीरिक दुल्हन गिर गई अदन वाटिका में, परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान का तर्क सुनने के द्वारा वो इस प्रकार गिरी। ठीक है श्रीमान, वो गिर गई क्योंकि उसने ये किया। आत्मिक दुल्हन अब वो कलीसिया है, मसीह की दुल्हन। वो गिर गई अदन वाटिका में नहीं, रोम में। देखिए, निशियन सभा में जब उसने पेंतिकोसल कलीसिया को अस्वीकार कर दिया जो निशिया में गए थे, और रोम के तर्क को सुना बजाय कि वचन को पकड़े रहती, वो गिर गई और हर चीज उससे दूर हो गई, उसके साथ मर गई उसके आसपास। अब जैसे शारीरिक दुल्हन गिरी, आत्मिक दुल्हन गिरी, परमेश्वर की दुल्हन गिरी वाटिका में गिर गई, मसीह की दुल्हन रोम में गिर गई। देखिए, ध्यान दें, उसी तर्क के द्वारा परमेश्वर के वचन के विरोध में उसने अपने सद्गुण के अधिकार को भी शैतान के लिए खो दिया, जो कि हम इन मोहरों के टूटने में पाते हैं। ये शैतान था और अब भी शैतान वहाँ है। बाइबल कहती है यही शैतान का सिंहासन है। और जैसे कि हवा ने अपने सद्गुण के अधिकार को खो दिया और उसे शैतान को दे दिया अदन की वाटिका में, कलीसिया मसीह की दुल्हन ने वही चीज रोम में की, जब उन्होंने बाइबल को उनके धर्म सिद्धांत और तर्कों के लिए खो दिया। देखिए ये कैसी प्रतिछाया है। आप बस इन प्रतीकों को चलाते हैं, आप बाहर आने के लिए बाध्य हैं। यदि मेरा हाथ इस प्रकार दिखाई पड़ता है, यदि मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा और मैं अपनी परछाई को आते देखता हूँ, तो मैं इस विषय में जान जाऊंगा कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ, समझे। परंतु यही मार्ग है। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, देखिए कि ये क्या था, क्योंकि पुरानी सारी चीजें आने वाली चीजों की छाया थी। बाइबल ने कहा ठीक है, उसने अपने सद्गुण वाले वचन को खो दिया, परमेश्वर के वचन को, जब उसने बाइबल को बेच दिया और वहाँ एक मनुष्य को रख दिया जो कहता है कि कलीसिया को अधिकार है कि जो चाहे वो बदल दे, और उन्होंने ये कर दिया। और मसीह की दुल्हन, पेंतिकोस्तल दुल्हन ने अपना सद्गुण नीसिया में बेच दिया, जैसे कि हवा ने अपना सद्गुण अदन की वाटिका में शैतान को बेच दिया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, ये कलीसिया, ये पेंतिकोस्तल कलीसिया जान रही थी कि वो ये करेगी, जैसे उसने हवा के साथ किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, पेंतिकोस्तल कलीसिया, क्या विश्वास करते हैं कि इसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया, इसके पहले अपना सद्गुण जब उसने वहाँ छोड़ा, आप विश्वास करते हैं? उसने निश्चय ही उसने किया। तो फिर मत्सार क्या अच्छा है जो कि बाइबल पर आधारित नहीं है? मैं चाहता हूं कि कोई ढूंढे जो कि प्रेतों का मत्सार कहलाता है, या इसका एक भी शब्द बाइबल में। ये कैथोलिक मत्सार है, न कि प्रेतों का मत्सार। प्रेत 2:38 पढ़िए, ये प्रेतों का मत्सार है यदि इसमें कोई है। जी हाँ, समझे, यही जो वो हर समय प्रयोग में लाए, जो भी है। इसलिए यदि आप समझे, इसलिए उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। केवल यही नहीं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंतिकोस्तल, बाकी सब ने वही किया। उसने एक नामधारी बना लिया। रोम किस चीज ने उससे यह करवाया? उसने नामधारी तैयार किया और मनुष्य को उसका अध्यक्ष बनाया। और मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतिकोस्तलों सबने वही काम किया, मनुष्य के झुंड को उनके ऊपर रख दिया। कोई मतलब नहीं परमेश्वर क्या कहता है, वे आपको वैसा ही करना है जैसा वे करने को कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? संसार में ये और कुछ नहीं सिवाय आत्मिक व्यभिचार के, गलत प्रकार की स्त्री। जी हाँ श्रीमान, मत्सार, झूठे मत्सार, मनुष्य द्वारा बनाए गए। तब वो हो गई जब उसने ये किया। अब मैं इसे सिद्ध करूंगा कि परमेश्वर के लिए वो व्यभिचारिणी हो गई। क्या विश्वास करते हैं कि बाइबल ये कहती है? जी हाँ श्रीमान, उसकी पुत्री ने भी यही किया। अब प्रकाशित वाक्य 17 में, यदि आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं, यहूना आत्मा में उठा लिया गया और एक बड़ी वेश्या को ऊपर बैठे देखा, और हमने इसे बीती रात्रि पढ़ा था, और वहाँ पर 7 पहाड़ हैं, और ठीक जो इसने किया था, और इसने संसार को अपनी गंदगी वाला व्यभिचार दिया था। क्या ये ठीक बात है? और पृथ्वी के सारे राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, धोखा और चोरी और झूठ और प्रायश्चित के लिए भुगतान और नोवीनों और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब याद रखें, उसके पास पुत्रियां हैं। अच्छा, यदि वो संस्था तंत्र की अधीनता में एक देह हो गई, तो फिर सारा तंत्र गलत है। और यदि हवा परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रही है, हर चीज को मृत्यु में डाल रही है जो उसकी अधीनता में है, और हर कलीसिया जो संस्थागत हो गई, तो उसकी अधीनता में हर चीज मृत्यु में चली गई। सही में हर चीज चली गई थी। ये बिल्कुल ठीक यहाँ वचन के अनुसार है। प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ें, और बाइबल ने कहा वो करेगा, उसे आग से जलाएगा और उसके सारे बच्चों को उसके साथ। ये ठीक बात है। इसका अर्थ है सारे संस्थागत तंत्र जलाए जाएंगे उस व्यभिचारिणी के साथ। अब ये बात सीधी साफ है, और मैं जानता हूँ आप इसे सुनेंगे, और मैं इसे सुनाना चाहता हूँ, और मैं ये ठीक बात है, यद्यपि बाइबल ने कहा है, इसलिए ये ठीक बात है। वो एक व्यभिचारिणी हो गई। आप इसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, 17वां अध्याय। स्त्री, उसने क्या किया? उसने व्यभिचार किया अपने ही पति के विरुद्ध। ठीक है, आप कहते हैं नहीं, ये तो बाइबल है, वचन, परमेश्वर है। और आप एक बात को लेते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी किसी और पुरुष को चूमे? यदि उसने इससे अधिक नहीं किया, तो उसको नहीं चाहेंगे कि ये करे। वो अपनी अपवित्रता को सिद्ध करेगी। जो कोई भी इसमें से एक भी शब्द निकालेगा या इसमें मिलाएगा, हालेलुया, मसीह अपनी पत्नी को वचन के साथ शुद्ध चाहता है। इसको इसी प्रकार होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं, एक भी बिंदु नहीं, या एक छोटा या कोई भी चीज या शीर्षक उस व्यवस्था से टलेगा या इस पुस्तक, जब तक कि ये पूरा ना हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसका कोई निजी अनुवाद ना करें। वो शुद्ध बिना मिलावट का चाहता है, यहाँ तक कि कोई उपहास भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ चुहलबाजी करे। और जब आप किसी प्रकार का तर्क सुनने को जाते हैं, इसके आगे जो आप सुन रहे हैं, तो आप शैतान के साथ चौंचलेबाजी कर रहे हैं। आमीन। क्या आपको इससे धार्मिक अनुभूति नहीं होती? परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध बने रहें, ठीक वचन के साथ बने रहें, इसी के साथ टिके रहें। ठीक है, परमेश्वर ने इससे प्रतिज्ञा की है, जैसा कि उसने अदन वाटिका में हवा के साथ की थी, इस अंतिम हवा के साथ की, जो कि पेंतिकॉस्टल कलीसिया है, कलीसिया का आरंभ, स्वयं कलीसिया, सारे जीवते लोगों की माँ, क्योंकि जब तक वे वहाँ उसमें जाते हैं। परंतु आप देखिए, जब वे उसके पापों में भागी होते हैं, वे उसके साथ मरते हैं। और यहाँ वो एक छोटा व्यक्ति आता है, वो कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, यहाँ जो आपको करना है वहाँ जाकर प्राश्चित करो। ठीक है, मैं ये करूँगा, परमेश्वर की महिमा हो, वहाँ जाओ और प्राश्चित करो, अब आकर हमारे साथ मिल जाओ, आप यही हैं, यही है, समझे? इसने ले लिया, ओह ये ठीक बात है, ठीक उसी के साथ मर गए, समझे? समझे, ये बस यही जो ये पुस्तक सिखा रही है, न कि जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा ही कहती है। ठीक है, अब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी है, जैसा उसने हवा को दी। उसने हवा को बताया कि एक समय आएगा कि वचन उसके पास फिर वापस आएगा। अब क्या आपको याद है, वो किसी चीज से खो गई थी, ये उसे वापस हो जाएगा। केवल एक ही चीज वापस की जा सकती है और वो वचन है। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा बंदूक चलाओ, यदि आप निशाने पर नहीं मारते तो देखिए ये कहाँ से अलग गया। आपको फिर वापस आकर और फिर से आरंभ करना है, समझे? और यदि आप वापस जाते हैं तो नीचे पहुँच जाते हैं, वहीं से फिर आपको आरंभ करना होगा। इन संस्थाओं से वापस आना ही है, उन कलीसियाओं से दूर रहो। हम इन मोहरों को सिद्धता में देख रहे हैं। मुझे अपने सारे जीवन में आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों इन संस्थाओं के तंत्र के विरोध में रहा। लोगों के नहीं, नहीं, लोग तो आप और मेरे जैसे हैं या कोई भी, परंतु वो तंत्र, वो नामधारी तंत्र, अब मैं ठीक इसे यहाँ देखता हूँ। मैं अब तब कभी नहीं जान पाया, और ये ठीक बात है। परमेश्वर ने आत्मिक हवा से प्रतिज्ञा की कि ठीक वैसे ही जैसे स्वाभाविक हवा से की, फिर से वचन उसे वापस मिलेगा अंत के दिनों में। वो कलीसिया को फेर देगा फिर से मूल वचन पर। अब ध्यान से सुने, मैं चाहता हूँ कि अब आप निश्चित हो जाएं। परमेश्वर ने हवा से प्रतिज्ञा की कि समय आएगा जब वचन उसके वंश को वापस फेर दिया जाएगा, वो वचन स्वयं में बीज हो जाएगा। और जब उन्होंने उसे एक उसके स्थान पर दिया, उसके पास वो विस्थापन दिया, और जब वचन उसके पास आया तो वो क्या करेगी? मैं ये नहीं चाहती, ये बहुत ही नम्र था, उसे ये ठीक प्रतीत नहीं हुआ, वो अधिक शानदार नहीं था, एक चरनी। ओ प्रभु, ओ इस प्रकार का व्यक्ति जो कभी विद्यालय नहीं गया, भाई मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, ये मसीहा नहीं है। एक व्यक्ति उसे इस प्रकार से लात मार रहा है और वो फिर वो मसीह कहला रहा है। उन्हें उसके मुंह पर कपड़ा ढांपने दे, फिर उसके सर पर मारे और अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहलाया। एक वास्तविक भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा हुआ है। वास्तव में उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को नहीं पहचाना, यीशु ने ऐसा कहा। उसने कहा, यदि तुम भविष्यद्वक्ताओं को जानते तो तुम मुझे भी जानते। ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, परंतु जब वचन उसके पास आया, जिस प्रकार ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा, वो आएगा, उसने उसे दूसरे ढंग से समझा। मैं दुल्हन के विषय में बात कर रहा हूँ, यहूदी दुल्हन, हिब्रू दुल्हन, वो आरंभ से ही हवा थी। तब जब यहाँ बाहर आई, उसने इसे नहीं चाहा, वो अपने विस्थापनों के साथ ही रहना चाहती थी। अब परमेश्वर ने आत्मिक हवा से प्रतिज्ञा की पेंतिकॉस्ट पर, यहाँ तक कि इसके होने से पहले बता दिया, 400 वर्षों पहले, इसके पहले कि कलीसिया कभी गिरी, कि वे गिर जाएंगे और वे वही करेंगे जो उन्होंने किया। परंतु उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा दी कि वो वचन को फिर से भेजेगा। यीशु ने वही बात कही जब वो इस पृथ्वी पर था, वो इसे फिर से भेजेगा और क्या, और ये क्या पाएगा? ये वही चीज पाएगा जो इसने तब पाई जब वो पहले आया। ठीक है, उनके पास है, वे अपना विस्थापन चाहते हैं, वे अपना नामधारी चाहते हैं, वे अपने मतसार चाहते हैं, वे वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे वे चाहते हैं, और वे चाहते हैं भाई मैं अमुक अमुक हूँ, मैं अमुक अमुक से संबंध रखता हूँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता परमेश्वर क्या कर रहा है। वो अपने आप को कितना प्रकट करता है, वो मरुओं को जिला सकता है, वो हृदय के गुप्त विचारों को बता सकता है, वो हर चीज कर सकता है जो बाइबल कहती है वो करेगा, इसमें जरा भी अंतर नहीं है। यदि वो मेरी संस्था से नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं, समझे? वही चीज इब्रानी दुल्हन ने की, ये ठीक बात है। देखिए, उन्होंने अपने विस्थापन की सुनी और परमेश्वर ने उनसे वास्तविक की प्रतिज्ञा की थी, और जब वास्तविक आया उन्होंने इसे नहीं चाहा, ये बहुत ही नम्र था। अब आज यही चीज है, जब जब ये दृश्य में उठता है, परमेश्वर ने मलाकी 4 में कहा कि वो अंत के दिनों में संदेश भेजेगा जो वापस लौटा कर लाएगा। योएल ने कहा मैं सारे वर्षों को लौटा दूंगा, हर चीज जो रोम खा गया, हर चीज जो मेथोडिस्ट खा गया, और हर चीज जो बैप्टिस्ट खा गया, उस मूल पेंतिकोस्त डाली में से, परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में लौटा दूंगा। ये ठीक बात है, और वो हमारे पास ऐसे व्यक्ति को भेज सकता है जो कि होगा। और केवल एक चीज जो परमेश्वर कभी अपना वचन भेजता है, वो एक भविष्यद्वक्ता है, न कि सुधारकों को, केवल भविष्यद्वक्ताओं को। ये इस बात के लिए घड़ी नहीं थी, अब ये उस घड़ी पर आ रहा है, और यही कारण है हम उसके आने की राह देख रहे हैं कि आए। ये इतना नम्र और सज्जन होगा, और इस प्रकार ओ प्रभु, तुम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, पेंतिकोस्तलो, तुम कुलीन तंत्रियों सोचते हो इसे कभी स्वीकार करोगे? ओ, आप कहते हैं पेंतिकोस्तल, पेंतिकोस्तल लुदिकियन है, धनी और कोई कमी नहीं। इसने कहा तू नहीं जानता कि तू निर्धन है, हो सकता है करोड़ों डॉलर की इमारत बना रहा है, परंतु फिर भी कंगाल है, आत्मिक कंगाल। ओ, आप कहते हैं मैं ये सब देखता हूँ, तू अंधा है। अच्छा, आप कहते हैं धन्य है परमेश्वर, मैं ढका हुआ हूँ, नंगा है। भाई, मैं अपने लड़कों के लिए निश्चित हूँ, हमारे पास सेमिनरियां हैं हम, और ये नहीं जानते। अब ये इसके विपरीत है। अब यदि बाइबल ने कहा कि लुदिकिया कलीसिया इस स्थिति में होगी, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इसका इनकार नहीं कर सकेगा कि ये अंतिम युग नहीं है, क्योंकि लुदिकियन कलीसिया युग या सातवीं कलीसियाई काल, और हम यहाँ हैं, दूसरे 2000 वर्ष इसे समाप्त कर रहे हैं, अब और कलीसिया काल नहीं है। यही कारण है कि आप अंतिम वर्षा के भाई लोग और दूसरी संस्था आरम्भ नहीं कर सके, कि अब कोई और नहीं होना है। ये ठीक बात है, ये अंत में है, आमीन, और कलीसिया काल नहीं हो सकते, ये पूरे हो गए हैं। परंतु तब यदि पेंतिकोस्तल संदेश अंतिम संदेश था, जो कि न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अंतिम तीन संदेश, अंतिम तीन कलीसिया युग, पूरे जन्म की प्रक्रिया को बनाते हैं, जैसे कि अब एक स्त्री अपने बालक को जन्म देने पर होती है, वास्तव में पहली चीज जो होती है जल, अगली चीज लहू, अगली चीज जीवन है। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर मारा, वो चीज जो उसकी देह से आई कि उस नए को बनाए, कि उस नए जन्म को करे, उन्होंने उसकी एक और प्रहार किया, लहू और पानी बाहर आया, और तेरे हाथों में अपना आत्मा देता हूँ। उसकी देह से क्या निकल कर आया था? जल, लहू, आत्मा। अब पहला यूहन्ना 5:7 आपको इस विषय में बताता है, वहाँ तीन है जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वचन जो कि मसीह है, और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक में सहमत हैं, वे एक नहीं हैं, परंतु वे एक में सहमत हैं, और तीन है जो गवाही रखते हैं, या वे एक हैं। मेरा अर्थ है कि मैंने वहाँ गलती कर दी, और तीनों जो पृथ्वी पर गवाही रखते हैं वो जल, लहू और आत्मा, और ये एक में सहमत हैं। आप बिना न्यायोचित हुए पवित्र हो सकते हैं, और बिना पवित्र हुए न्यायोचित हो सकते हैं। आप बिना पवित्र आत्मा पाए आप पवित्र हो सकते थे, ये बिल्कुल सही है। चेले यूहन्ना 17:17 में पवित्र किए गए थे, और प्रेत आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दी गई थी, परंतु अब भी पवित्र आत्मा नहीं था, समझे? निश्चय ही पेंतिकोस्त तक पहुंचना था, और पवित्र आत्मा आने तक की प्रतीक्षा करनी थी। यही जहां यहूदा ने अपने रंग दिखा दिए थे। देखिए कैसे वो आत्मा न्यायोचित और पवित्रीकरण में से होते हुए काम करती है, परंतु जब वो अपने अंत में आते हैं तो उसे उसने अपने रंग दिखा दिए। देखा, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, और यहाँ अब हम अंत समय में हैं, और आत्मिक हवा, जैसे कि हिब्रू हवा से प्रतिज्ञा की गई थी, हिब्रू हवा से वचन वापस करने की प्रतिज्ञा की गई थी, और आत्मिक दुल्हन पेंतिकॉस्टल से जब वो निसिया में गिर गई, तब उससे अंत के दिनों में प्रतिज्ञा दी गई थी कि वचन फिर से वापस आएगा। अब आप कहते हैं, तब आप दूसरा पवित्र लेख चाहते हैं? यहाँ प्रकाशित वाक्य 10 ले लीजिए, और कहा, उस घड़ी में अंतिम दूत के समय में सातवें दूत के सातवां संदेशवाहक जब शब्द देने पर होगा तो परमेश्वर के भेद समाप्त हो जाएंगे। समझे, वापस वचन पर आना। बाइबल ने कहा कि अंत दिनों का ये संदेशवाहक होगा, उन्हें फिर से मूल विश्वास पर वापस लाएगा, वापस पूर्वजों के विश्वास पर। परंतु क्या आप सोचते हैं वे इसे स्वीकार करते हैं? नहीं श्रीमान, अंतिम दिनों में वो फिर से मूल वचन को वापस लाएगा, जैसा कि उसने मलाकी 4 में कहा है। परंतु उसने खो दिया था, अब उसने ये वचन निसिया में खो दिया था, हवा ने अदन में खोया, हवा ने अपना यहाँ कैलवरी पर अस्वीकार कर दिया, और निसियाओं का झुंड इसे इस अंतिम दिनों में अस्वीकार कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। ओह, परंतु जब वचन मानव देह में आया, उस हवा ने, इब्रानी कलीसिया ने, सारे आत्मिक जीवों की माता, इसने इसे अस्वीकार कर दिया। वो अपने रिवाजों और धर्म सिद्धांतों में इतनी मरी हुई थी कि चूक गई। इस प्रकार से ये वाला बिल्कुल ठीक है, वे उसे चूक गए। जीवित वचन देह में प्रकट हुआ, वचन के द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वचन ने इन चीजों के करने की प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि अंतिम दिनों में ये इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब देखिए क्या घटित हुआ सादोम में, जैसा कि ये नूह के दिनों में था, ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। समझे, ध्यान दें, तब क्या हुआ? समझे, अब उसने कहा कि ये वही चीज होगी और हम उस दिन में रह रहे हैं। अच्छा, और ये हो सकता है, मैं समझता हूँ इस प्रकार के, मैंने इनमें से 600 प्रतिज्ञाएं ले सकता हूँ इस पवित्र वचन में से, बस इसका उल्लेख कर रहा हूँ। समझे, अब परंतु वे इसे अस्वीकार करते हैं। उसने रीति रिवाज और विस्थापन पकड़े रखे हैं, बजाय इसके कि उसने लहू का विस्थापन को पकड़े रखा, बजाय वास्तविक लहू के। यीशु वचन ने कहा, जब ये उस पर प्रकट किया गया, क्योंकि उसने इन रीति रिवाजों को पकड़ रखा है। यीशु जो प्रकट हुआ वचन, उसने दुल्हन से कहा, इब्रानी दुल्हन से, क्योंकि तूने अपनी रीतियों को पकड़ रखा है, तू परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रभाव रहित बना रही है, ये प्रभावित नहीं हो सकता। अब आज यही कारण है कि वे बेदारियां जो हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारे पास नामधारी बेदारियां हैं, हमारे पास एक वास्तविक भावोत्तेजक नहीं था। नहीं 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 श्रीमान, मत सोचिए कि हमारे पास बेदारियां हैं, हमारे पास नहीं है। ओ, उनके पास लाखों और लाखों और लाखों कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु बेदारी कहीं नहीं है। नहीं नहीं, दुल्हन के पास अभी भी बेदारी नहीं है। समझे, वहाँ अब बेदारी नहीं हो रही है, परमेश्वर का कोई प्रकटीकरण नहीं है कि अब भी दुल्हन को झकझोर दे। समझे, अब हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये वहाँ पीछे उन सात अनजाने गर्जनों से होगा कि उसे फिर से जगा दे। देखा, जी हाँ, वो इसे भेजेगा, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब ध्यान दें, अब वो थी, वो मरी हुई थी, और अब यदि कलीसियाएं अपने मतसारों को भूल जाएं और अपने मत सिद्धांतों को, और बस बाइबल ले लें और प्रतिज्ञाओं का निवेदन करें, तो ये उनके लिए प्रभावशाली होगा। परंतु देखिए, यीशु ने कहा, तुम अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रभाव रहित कर लेते हो। आज आत्मिक हवा के साथ ठीक यही बात है। आज की कहलाने वाली आत्मिक दुल्हन कलीसिया, वो परमेश्वर के वचन को लेती है और वे इसे स्वीकार नहीं करेगी, उसके बदले में मत सिद्धांत को लेती है, इसलिए वचन उसके लिए प्रभावशाली नहीं है। देखिए, क्योंकि वो वचन के साथ अपने मतसार को घुसा देती है और ये काम नहीं करेगा। अब आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग के मुख्य शीर्षकों में से होते हुए इसे पढ़ता रहा। हमें भविष्यवक्ता की आवश्यकता है कि वो लौट कर आए। हमें आवश्यकता है कि एक भविष्यवक्ता वापस आए, और मैं समझता हूँ कि जब वो वापस आता है तो वे इसके विषय में कुछ नहीं जानेंगे। बस ये ठीक बात है, ये सदा इसी प्रकार रहा है। आप देखते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है कि हर चीज जिसके विषय में आप बात करते हैं, हमें आवश्यकता है कि एक भविष्यवक्ता लौट कर आए जो प्रभु का वचन लेकर आएगा निर्भय होकर। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल ने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब मैं भाई मूर को जानता हूं कि वे उसके घर में खाते हैं और सारी बातें, संपादक, और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो कि नम्रता में चलता है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, परंतु देखिए, वो जानता है कि वो हमारे पास होना चाहिए। और बहन मूर महिलाओं में से एक बहुत ही बढ़िया छोटी एक बेचारी स्त्री, और उन्होंने बलिदान दिया, और ये इस क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा अखबार है, हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग। मेरे विचार में बहुत, अब आप पाते हैं वे चिल्लाते रहते हैं, हमें एक भविष्यवक्ता चाहिए, हमें एक भविष्यवक्ता चाहिए। देखिए, ओ, वे इस विषय में बात करते हैं। और फिर आज हम यहाँ पर हैं, और जैसे बीते कल और आज रेडियो पर घोषणा हो रही है कि, और बैप्टिस्ट कलीसियाएं और आदि आदि, हम कैथोलिकों को नहीं लेंगे, परंतु हमारी उनके साथ संगति है, समझे? और ठीक यहाँ संदेश ठीक यहाँ पर है कि जहरीली चीजों से दूर रहें। देखा, समझे? दो जन कैसे साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हो? उजियाला और अंधियारा एक साथ संगति नहीं कर सकते। जब उजियाला आता है तो अंधकार चला जाता है, समझे? ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही सामर्थी है। उजियाले को आप अंधेरे के साथ बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु आप अंधकार को उजियाले से बाहर कर सकते हैं। ये ठीक बात है, और वो उजियाला है, और वो वचन है, समझे? अब आप वहाँ हैं, ठीक सीधे पीछे, आप इसे झुठला नहीं सकते या कुछ गलत करें। मैं सीधा उसी स्थान पर वापस आता हूँ। जी हाँ श्रीमान, जैसे कि कुछ लोगों ने शुरू किया आपके साथ बतंगड़ बनाने की कोशिश की, यदि आप जानते हैं कि आपको वहाँ खड़ा होना है तो जानिए कि वो क्या विश्वास करता है। ये ऐसा है कि एक खरगोश को लेकर एक खुले हुए बाड़े में छोड़ दें और आप उसके सारे छेद बंद कर दें और बस दरवाजे पर खड़े हो जाएं। उसे वापस आना पड़ेगा, इसके लिए बस यही है, समझे? उसे वापस फिर उसी दरवाजे पर आना पड़ेगा, क्योंकि वही केवल एक रास्ता है जिससे वो बाहर जा सकता है, और वो उसमें अपना सर फंसा लेगा और लगभग अपनी गर्दन को तोड़ लेगा और इधर उधर जाएगा, इधर उधर, बस खड़े होकर उसे ध्यान से देखें, फिर वापस आएगा, समझे? बस यही है, इसे करने का केवल एक यही तरीका है, वचन के साथ बने रहें। आप सारे मत्सरों के साथ चारों ओर फट सकते हैं, हर जगह अपनी गर्दन तोड़ेंगे, परंतु आपको वचन पर वापस आना पड़ेगा, समझे? जी हाँ श्रीमान, इसका बस सब यही है। अब देखिए, वे इसे नहीं चाहते, वे परमेश्वर का वचन नहीं चाहते, क्योंकि उसने अपने रीति रिवाजों को पकड़ा हुआ है, उसने परमेश्वर के वचन प्रभाव रहित कर रही है। अब बिल्कुल वैसे ही आत्मिक हवा के साथ है, वो नहीं चाहती, वो अपने रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहती है और परमेश्वर के वचन से दूर रहना चाहती है। वो फिर से नामधारियों को पकड़ लेती है और उनके मत्सारों को और अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को, बजाय कि परमेश्वर के वचन को ले। अब अंत के दिनों की प्रतिज्ञा का वचन उसके पास लाया गया तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जैसे इब्रानी दुल्हन ने अपने रीति रिवाजों के साथ किया, वास्तविक वचन को जबकि प्रकट किया गया, प्रमाणित कर दिया गया, समर्थन दिया गया, वो इसे नहीं लेगी। वो क्यों नहीं स्वीकार करेगी? क्योंकि वहाँ उसकी प्रतिछाया है, वो नहीं कर सकती। ये ठीक बात है, वो अपनी प्रतिछाया को तोड़ नहीं सकती, समझे? और ये भविष्यवाणी की गई है कि वो ये करेगी, तो फिर आप किस चीज से कैसे अलग हो सकते हैं? अब करने के लिए केवल एक ही चीज है, आप जहाँ हैं उसी में आनंदित रहें, वरन उसके लिए प्रतीक्षा करते रहें। ठीक है, परमेश्वर ने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा दी है कि वो उसके लिए अपने वचन को प्रकट और उसका समर्थन करेगा, और फिर भी वो ये नहीं करेगी। वो सब जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा दी है अपने दासों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर ने योएल के द्वारा प्रतिज्ञा दी है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, मलाकी के द्वारा, यहुन्ना, परमेश्वर ने यहुन्ना प्रकाशन वाले के द्वारा, वे सारे भविष्यवक्ता, ठीक वही अंतिम संदेश उसके लिए होगा। अब यदि आप उन्हें लिखना चाहते हैं, निसंदेह आप उन सब को जानते हैं, यीशु, यहुन्ना 14:12 और योएल 2:38, पौलुस दूसरा तीमोथियुस 3 मलाकी का चौथा अध्याय और यूहन्ना प्रकाशन वाला प्रकाशित वाक्य 10:17-17। देखिए अब ठीक क्या घटित होने वाला है अब और कलीसिया को ये क्या है। अवतरित वचन अपने लोगों के बीच में फिर से देहधारी हुआ, समझे, और बस उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। अब जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा जब उसने देखा कि वो जब उसने उनके सामने वे आश्चर्य कर्म किए, प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर था, प्रमाणित किया कि वो क्या कर रहा था, वो था, उसने ठीक वही किया था। उसने उनसे कहा, उसने कहा, ओ तू कफरनहूम, तू जो स्वर्ग तक उठाया गया, यदि वे काम जो किए गए, सामर्थ्य कार्य जो साधुओं में किए जाते, जो तुझ में किए गए, तो वो आज तक खड़ा होता। ये ठीक बात है। और कफरनहूम में उसने कभी कुछ नहीं किया सिवाय कुछ लोगों को चंगा किया और उनके हृदय के गुप्त विचारों को बताया और चला गया। ओ बस यही है, समझे, सामर्थ्य काम क्या होते हैं वे नहीं जानते। वे सोचते हैं ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां हर कोई उठ खड़ा होता है और न्यायी एक भाषण देता है और संगीत बजता है और रंग उड़ते हैं और अच्छे कपड़े पहने स्त्रियां और उनके और ठहरे रहते हैं और सारे पीएचडी एलएलडी वाले और बड़ी ऊंची टोपियां, गोल वाले कॉलर और सारी चीजें और उन सबको अंदर आना पड़ता है। ये कोई महान चीज है, परमेश्वर कहता है ये मूर्खता है। और वो कुछ छोटा सा लाता है कि ये नहीं जानता कि कैखे गए में क्या अंतर है, मुश्किल से, और कुछ करता है जो कि वास्तविक कलीसिया को प्रज्वलित कर देता है और बाकी लोग कहते हैं पवित्र शोर करने वालों का एक झुंड। परमेश्वर इसे महान कहता है और संसार इसे मूर्खता कहता है। संसार उसे महान कहता है और परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। देखिए बस उल्टा है, समझे, और वो चीज जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर करेगा और कर चुका, समझे। हम यहाँ इसी दशा में हैं। अब भी वो वैसे ही है जैसे उसने किया, वो इब्रानी हवा, वो बस इसे नहीं करेगी। अब मरुओं को जिला सकते हैं, आप परमेश्वर के आत्मा को देख सकते हैं। यीशु नीचे आया और परमेश्वर का पुत्र हूँ प्रकट किया। पहले उसने प्रचार आरंभ किया, ठीक, उन्होंने सोचा भाई एक प्रकार का विचित्र व्यक्ति जो भी है, कौन है। अच्छा पहली बात हम जानते हैं, आप लोग कहने लगे, निसंदेह उन्होंने पहले भी कहा जब उसका अग्रदूत आता है यूहन्ना, उन्होंने कहा क्या तू मसीह है, उसने कहा नहीं, परंतु वो कहीं तुम्हारे बीच में खड़ा है। ओ समझे, वो जान गया जब उसका संदेश होता है तो उसे क्या करना था, वो जानता था कि वो उसे क्या करने जा रहा था। जैसे कि नूह हनोक पर दृष्टि रखे हुए था, जब हनोक चला गया नूह ने कहा अच्छा है कि नाव के आसपास आ जाऊं, समय निकट है। नूह हनोक पर ध्यान रख रहा था, समझे, और यूहन्ना चिन्ह पर ध्यान दिया जो यीशु ने उसे बताया था, परमेश्वर ने उसे ध्यान देने को बताया। उसने कहा वो अब ठीक यहाँ पर खड़ा है कहीं तुम्हारे बीच में, मैं उसे नहीं जानता परंतु मैं उसे जान जाऊंगा। वहाँ खड़े हुए उन्होंने कहा क्या तू मसीह नहीं है, कहा हम मुख्य कार्यालय से भेजे गए हैं। ओ कहा वो प्राचीन और सारे उन्होंने हमें नीचे भेजा है, यदि तू मसीह है तो क्यों नहीं तू ऊपर आकर अपने आप को दूसरों पर प्रकट कर, न कि यहाँ नीचे इन चीजों के झुंड में, तू वहाँ आ और अपने आप को प्रकट कर। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ। ये उनके सिर के ऊपर से निकल गया जितना निकल सकता था, वे इस विषय में कुछ नहीं जानते, देखिए, और फिर भी वे उसकी राह देख रहे थे कि आए, परंतु ये उनके समान नहीं हो सकता था। ओ प्रभु वो तो भयानक होगा, तू कौन से विद्यालय से आया है, किसी से भी नहीं, क्या तेरे पास तेरा संगति पत्र है, ये क्या होता है। देखा वो परमेश्वर का अभिषेक था। उसने कहा मेरे पास एक चीज है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है। अब बस इतना ही उसके पास यही था। उसने लकड़हारे की भाषा में बातें की, न कि पादरी के शब्दों में, सांप और कुल्हाड़ी और पेड़ और आदि आदि। उसने पुरोहितों की भाषा में बातें नहीं की, परंतु यीशु ने कहा उसके समान कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ, कभी भी कोई मनुष्य स्त्री से उसके समान नहीं जन्मा। आज तक ये ठीक बात है, वो भविष्यद्वक्ता से बढ़कर था, वो वाचा का संदेश वाहक था, ठीक दो आने वाले धार्मिक विधानों के बीच में खड़ा था, समझे, एक भविष्यद्वक्ता से बढ़कर। और इसलिए वे उसे नहीं जान पाए, वे उसे समझ नहीं पाए, वो एक प्रकार से विचित्र व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। देखा तब जब यीशु आया तब, और निश्चय ही वे उस बढ़ई के लड़के को स्वीकार करने वाले नहीं थे, इससे बढ़कर कुछ नहीं था कि उसके नाम के साथ एक काला धब्बा था, अवैध, और इस प्रकार के व्यक्ति से नहीं मिलने जा रहे थे। परंतु देखिए परमेश्वर ने क्या किया। उसने अनपढ़ निर्धन मछुआरों लकड़हारों किसानों वेश्याओं को लिया और विशिष्ट लोगों को वहीं बैठे रहने दिया। क्यों? क्या उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने ऐसा इन चीजों को किया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने उसे पहचाना कि वो वचन है। अब आइए एक मिनट के लिए उन पर ध्यान दें। यहाँ एक बूढ़ा अनपढ़ मछुआरा है, अपना नाम नहीं लिख सकता। बाइबल ने कहा कि वो अज्ञानी अनपढ़ और वो अपनी मछली लाकर बैठ जाता है, वहाँ नीचे जाता है और सारे कोलाहल को देखता है कि क्या है। परंतु वहाँ उसके अंदर गहराई में वो जानता है कि बाइबल ने कहा है कि मसीहा, सारे इब्रानी मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ वचनानुसार चीज को घटित होना था जब वो आता है। वहाँ बहुत सारे मसीहा थे, उठे और बोले मैं वो हूँ, और सैकड़ों लोगों को अगवा कर ले गए और नष्ट हो गए और सब बातें। परंतु देखिए, ये असली वाले को दूर हटा देगा जब वो आता है। हमारे पास एलिया की चादर और वस्त्र है और सारी दूसरी चीजें, परंतु ये उस वास्तविक चीज को दूर फेंकना जब वो आता है, समझे? ये ठीक बात है। सब प्रकार के लोग जिन्होंने वस्त्र और कपड़े पहन और सब प्रकार के टोपों और कपड़े अपने चारों ओर लपेटे हुए थे और सारी चीजें जो नहीं, ये केवल समर्थन प्राप्त करता है, जैसे कि नकली डॉलर। ये दिखाता है कि कहीं सही वाला है यदि आप उसे खोज सकें, समझे? इस प्रकार वो यहाँ आता है और अब ये उच्च अधिकारी बाहर आते हैं और वे अपने अनुकल्पों पर इतने अधिक थे। क्यों? उन्होंने कहा अब यदि मसीह आता है तो वो निश्चित रूप से कैफा के पास आएगा, वो हमारे नामधारियों में आएगा, वो फरीसियों के पास आएगा, सदूकियों, यही आप सोचते हैं, वो सदूकियों के पास आएगा, जैसा कि वो वहाँ पर थे। आज भी उनके पास वही बात है। अब परंतु जब वो आता है तो वो अपरिचित था। ओ, वो आएगा उनके विचारों से बिल्कुल विपरीत, परंतु वो वचन के अनुसार आएगा और उन्हें वचन नहीं मालूम। मैं आपसे कहूं कि वास्तव में आप भी होंगे, ये गहराई में बैठ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं, आज आपके साथ यही मामला है। देखिए, आप वचन नहीं जानते, समझे? यीशु ने कहा तुम आकाश के विषय में जान सकते हो, परंतु समय के चिन्ह को तुम नहीं जानते। बोले हमारे पास मूसा है, इसलिए कहा यदि तुमने मूसा को जाना होता तो तुम मुझे भी जानते। मूसा को नहीं जाना, इसलिए वे नहीं जान पाए। वे बस मत्सार को जानते हैं जहाँ से वे जन्मे हैं। अब चलिए इस बूढ़े मछुआरे को लेते हैं, उसकी टोकरी नीचे रखते हैं, अपनी सफेद दाढ़ी को नीचे करता है और जाता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं देखूंगा ये कौन है। भाई ने कहा आजा यहाँ नीचे चलते हैं। कहा ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही है जो उस दिन उन्होंने कहा बीती सारी रात में मैं उसके साथ रहा। यूहन्ना तुम जानते हो इस विषय में, मैं तुमसे बातें कर रहा था। जी हाँ, वहाँ वो जंगली पुरुष, हाँ मैंने वहाँ उसके विषय में सुना। जी हाँ, दो या तीन महीने पहले मैं वहाँ पर था। हाँ ठीक है, उसने कहा। और एक दिन वो वहाँ खड़ा था, उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा तुम जानते हो वो सीधा सीधा यहाँ आता है। उन्होंने कहा तुम उसे कैसे जानते हो? इधर की ओर देखो, बस एक साधारण मनुष्य वहाँ खड़ा है। उसने कहा मैं परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखता हूँ, मैं एक आवाज को कहते सुन रहा हूँ कि यही है वो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। तब वो सीधा पानी में गया और उसे बपतिस्मा दिया आदि आदि। भाई वहाँ उसने कहा कि वो उसे जानता है। शमौन बोला वो मैं नहीं जानता, मैंने ये सब बहुत बार सुना है, परंतु वो यहाँ आता है। परंतु उसके हृदय की गहराई में पहले से ठहराया हुआ बीज है, समझे? यीशु ने ऐसा कहा, ठीक है। उसके पास गया, चलता हुआ गया और कहा मैं सभा में जाऊंगा और देखिए वहाँ वो जाता है। वहाँ यीशु खड़ा था, बस एक साधारण सा व्यक्ति, चल कर आया। उसने कहा क्यों, तेरा नाम शमौन है और तेरे पिता का नाम योना था। इससे उसकी हवा निकल गई। क्यों? वो छोटा अनंत जीवन का बीज वहाँ प्रभावित हुआ। जी हाँ श्रीमान। कहा एक मिनट रुको, ये कैसे है? तूने मुझे कभी नहीं देखा, ना ही तूने मेरे पिता को जानता है, क्योंकि उसको मरे हुए वर्षों बीत गए, परंतु तूने आकर मुझे ये बता दिया। अब मैं जानता हूँ कि बाइबल कहती है, अब ये वो कि वापस जाकर देखें प्राचीन क्या कहता है। परंतु बाइबल ने कहा कि मसीह एक भविष्यद्वक्ता होगा और वो है, यही है वो। एक दिन वो सामरिया से होकर जा रहा था, वहाँ वो यहूदियों के झुंड के साथ निकलकर जाता हुआ, उसने उन्हें छोड़ दिया और ये छोटी बदनाम सी स्त्री वहाँ निकलकर आई, संभव है सुंदर छोटी महिला। आप जानते हैं उसे गली से एक बालक के समान निकाल दिया गया था और वो वहाँ से जा रही थी, संभव है वो किसी चीज के विषय में विचार कर रही थी। उसने वहाँ पहुँच कर अपनी बाल्टी रखी और उसने अपनी रस्सी नीचे करनी आरंभ की। अब जानते हैं पानी लेने के लिए, और उसने एक पुरुष को कहते सुना, मुझे पानी दे। उसने चारों ओर देखा और वहाँ एक अधेड़ सी आयु का यहूदी बैठा था। उसने कहा, बोली, क्या तू यहूदी नहीं? तुझे ये नहीं करना चाहिए। तेरे लिए मुझसे बात करना व्यवहारिक नहीं, मैं सामरी हूँ। उसने कहा, परंतु यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है, तू लाती, तू मुझसे पानी को मांगती। कहा, तेरी बाल्टी कहाँ है? समझे, तेरी रस्सी कहाँ है? ठीक है। उसने कहा, जो पानी मैं देता हूँ जीवन है। क्या देखा कि वो बोली, तुम क्यों यरूशलेम में भजन करना चाहते हो और हमारे पूर्वजों ने आराधना की? और उसने कहा, ये ठीक है, परंतु कहा, हम यहूदी जानते हैं कि हम जो आराधना करते हैं, परंतु कहा, आप जानते हैं कि समय आ रहा है जब मनुष्य यरूशलेम में आराधना नहीं करेगा या इस पहाड़ पर। उसने कहा, वे परमेश्वर की आराधना आत्मा में करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक आत्मा है, आत्मा और सच्चाई। अच्छा, वो अध्ययन करने लगी, आप जानते हैं। और उसने कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, मेरा पति? मेरे पास कोई पति नहीं है। क्यों? कहा, ये सच है। कहा तू पांच के साथ भागी फिर रही थी और छठवां है। और कहा, तेरे पास पांच थे और आप जानते हैं, तूने सच बताया। ध्यान दें, ये क्या था? उजियाले ने उस बीज को प्रभावित किया जो वहाँ पड़ा हुआ था, जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया था। जी हाँ श्रीमान, वो पृथ्वी पर था जब परमेश्वर ने जल को हटा दिया और सूरज उस पर चमका, वो ऊपर आ गया। ये ठीक बात है, समझे? कुल मिलाकर इसकी आवश्यकता थी, सूरज था, बस उजियाले की आवश्यकता हुई। जी हाँ श्रीमान। और तब जब पवित्र आत्मा उसमें उसके बीते समय को झकझोरा और उसे दिखा दिया, उजियाले ने उस पर प्रहार किया। उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। उसने कहा, अब हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि जब मसीह आता है, यही जो वो करने जा रहा है। और हमारे पास सैकड़ों वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं, सैकड़ों वर्षों से हमारे पास सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी नहीं था। और उसने कहा, तूने मुझे मेरे पति के विषय में कैसे बता दिया और मुझे बताया कि मेरे पास कितने थे और आदि आदि? क्यों? कहा, मैं नहीं समझ पाती। कहा, जब मसीह आता है वो ये करने जा रहा है, परंतु तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ। यही था, समझे, एक वेश्या। और याजक ने चारों ओर देखा और कहा, भाई, उनको अपनी भक्त मंडली में उत्तर देना था। कहा, उस व्यक्ति के साथ मूर्ख ना बनो, वो शैतान से ग्रसित है। बस अब यही अंतर है, आज भी वही बात है, समझे, आज वही बात है, ठीक वैसे ही प्रभावशाली। हाँ हाँ श्रीमान, वो ये जान गई क्योंकि उजियाले ने प्रभावित किया। वे मछुआरे, लकड़हारे, किसान, महसूल लेने वाले, वेश्याएं, उस साधारण वचन ने जो कहा, उन्होंने उसमें देखा, कहा वो करेगा, और फरीसी ये नहीं देख सके अपने रीति रिवाजों के कारण। वे अपने रीति रिवाजों के कारण नहीं देख सके, परंतु वेश्याएं, किसान और सारे, उन्होंने ये देखा, सारे जो पहले से ठहराए हुए थे, जब संदेश समाप्त हो गए, बीज बढ़ने लगा। ये ठीक बात है। उसने क्या किया? उसने कहा, अच्छा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी भेंट मसीहा से हो गई। ओ नहीं भाई, वो सीधी नगर को चली गई, पानी के विषय में भूल गई। उसने कहा, आओ देखो, एक मनुष्य, उसने सारी चीजें जो मैंने की मुझे बता दी। क्या यही तो वो मसीह नहीं जिसके लिए वचन कहता है कि वो ये करने वाला है? क्या ये ठीक नहीं? और लोग वही चीज देख सके, जैसा कि यीशु ने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, ये फिर से होगा। ये उसने लूका में भी कहा, जब उसने कहा, जैसे कि ये नूह के दिनों में हुआ था, कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया और बताया कि उसके पीछे कौन था, और सारा ने क्या किया, तंबू में हंस रही थी, और मलाकी के सारे वचन और आदि आदि अंत के दिनों में भविष्यवाणी की। इब्रानी 4 ने कहा, जब वचन वापस आता है, मलाकी 4 ने कहा, ये एक मनुष्य के द्वारा वापस लाया जाएगा। इब्रानी 4 ने कहा, परमेश्वर का वचन हृदय के विचारों को परखता है। और वे इसे होते हुए देख सकते थे और इसे छोड़कर चले गए। उनके रिवाजों ने इसे छिपा दिया और प्रभाव रहित बना दिया। हम ठीक यहीं पर हैं, बस कुल मिलाकर, ओह, आप जानते हैं, आज भी वो वही चीज कर सकता है। वो ठीक दृश्य पर आएगा और उन्हीं चीजों को करेगा जो उसने तब की, जैसा कि उसने कहा वो करेगा, समझे। उसने ये करने की प्रतिज्ञा की, उसने ये करने की प्रतिज्ञा दी है, और यदि वो वही चीज करता है, लुदिकिया के संदेश वाहक को यही करना था, और तब यदि लुदिकिया की कलीसिया ने ये होते देखती है, वे ठीक वही करेंगे जो इब्रानी कलीसिया ने आरंभ में किया। कोई मतलब नहीं कि ये कितना प्रमाणित हुआ, ओ वे ये करेंगे जो भी है, ओ प्रभु। अब ये कहता है ये होगा, हम मूल वचन पर वापस जाएंगे, और प्रतिज्ञा के समान प्रकट हो गया कि विश्वास को वापस लाए, मूल विश्वास को फिर से। और यदि वो अपने आप को प्रकट करे कि वो अपने लोगों के मध्य में रह रहा था इन चीजों को करने के द्वारा, यहाँ तक कि उसने अपना चित्र भी उतारने दिया, वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध होता है, और फिर भी वे इसका विश्वास नहीं करते। और सिद्ध हो गया, कैमरे की यांत्रिकी आंख ने उसे वहाँ खड़े हुए पकड़ा, वही अग्नि स्तंभ कल आज और सदा तक एक सा है। इब्रानियों 13:8 ने इसे दर्शाया कि ये वैज्ञानिक है, और इस प्रकार से ये प्रमाणित हो सका, ये प्रमाणित हो रहा था, और आप जानते हैं वे संभवतः वही चीज होंगे, संभवतः वे वहाँ से चले गए और चीजों को किया जैसे उन्होंने किया। ओ परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इसे देख सकें। मेरी प्रार्थना है कि अब हम आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देर तक रोके नहीं रहना चाहता हूं। परमेश्वर इसे देखने में हमारी सहायता करे, मैं विश्वास करता हूं, संभव है आत्मा हमारे ऊपर हो, ये इस समय होगा कि वो प्रकट करने में हमारी सहायता करे, इस मोहर के खोलने में। हम इसे पढ़ें, जैसा कि हम कलीसिया की स्थिति को जिसमें ये है देखते हैं, हम देखते हैं ये कहाँ पर थी, देखा कि उन्होंने क्या किया, देखा कि उन्होंने कहाँ आ जाना चाहिए था, देखा कि उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्होंने बस वही किया। अब आप देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, आप आंक रहे हैं, मैं नहीं आंक सकता, मैं तो इस वचन को लाने के लिए उत्तरदायी हूँ, जैसा कि ये मुझे दिया गया, मैं दे सकता हूँ, जब तक ये मुझे नहीं दिया गया मैं इसे नहीं दे सकता था, कोई भी नहीं सकता। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब मेमने ने पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया है, मोहरों को तोड़ रहा है, उसने पहली वाली तोड़ी, दूसरी तोड़ी, और अब वो तीसरी तोड़ रहा है, और जैसा कि वो इसे तोड़ता है, मेमना इसे तोड़ता है, तीसरी मोहर, तीसरा पशु। अब कितने ये जानते हैं कि तीसरा पशु कैसा दिखाई पड़ता है, मनुष्य के समान दिखाई पड़ता है। पहला वाला सिंह के समान दिखाई पड़ा, दूसरे वाला बछड़े के समान दिखाई पड़ा, एक बैल, और तीसरा वाला मनुष्य के समान दिखाई दिया। और उसने जीवधारी को कहते सुना, पशु को, जीवधारी मनुष्य के समान यहुन्ना से कहा, आ देख ये क्या है, ये भेद जो कि छिपा हुआ था छुटकारे के इन सारे वर्षों में जब से पृथ्वी की रचना हुई, ये इस मोहर के नीचे छिपा था कि क्या घटित होने जा रहा है। अब आ देख ये क्या है, और इसलिए उसने इसे खोला, एक गर्जन होती है और मेमना मोहरों को खोलता है। अब यहुन्ना आगे बढ़ा देखने के लिए कि ये क्या होगा, उसने क्या देखा, उसने एक काला घोड़ा देखा और उसके सवार के पास एक तराजू था या पैमाना उसके हाथ में, ये पहली चीज जो उसने देखी। जब मेमने ने ये घोषणा की, मोहर को तोड़ा, तब दूसरे पशु, देखिए वे पशु उस घोषणा के लिए घूम रहे हैं, आ देख। और यूहन्ना कहाँ खड़ा था, हो सकता है इस प्रकार से वहाँ गया जब मेमने ने खोला, और वो वहाँ गया, अक्सर गर्जन हुई जैसा कि हमने पहली मोहर को देखा, और वो ध्यान देता है, देखे कि क्या घटित होता है, और वो एक मनुष्य को आते हुए देखता है, पहले एक सफेद घोड़े पर वो देखता है घुड़सवार निकल जाता है, और वो यूहन्ना उसे अंत तक जाते देखता है, वो उसे आते हुए देखता है, उसका सफेद घोड़ा, उसके हाथ में धनुष है और घुड़सवार के पास, और उसके पास तीर नहीं है, और अगली चीज वो देखता है, उसको एक ताज मिला, सवार होकर निकल जाता है। तब हम पाते हैं, तब मेमना यहाँ फिर से आता है, वो दूसरी वाली खोलता है और देखता है, अब यहाँ पर लाल घोड़ा आता है, इस मनुष्य के हाथ में तलवार है, वो वचन में से होता हुआ निकलता है, देखिए ये तलवार उसके हाथ में है, मार डालने को था और पृथ्वी पर से शांति उठा ले। अब मेमना दूसरी मोहर खोलता है, दूसरा वाला जीवधारियों में से मनुष्य के समान बोला, आ देख, और वो बढ़ता है, देखिए ये क्या है। जब वो ये करता है तो वहाँ पर एक घुड़सवार काले घोड़े पर आता है। अब बीती रात्रि हमने पाया वही घुड़सवार जो सफेद घोड़े पर था वही लाल वाले पर है, और पशुओं के बीच में से एक शब्द आया, बुलाया। आप देखते हैं कि वहाँ वो देखने आता है कि ये क्या था। वो इन जीवधारियों में था और उसने इस काले घोड़े को देखा, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का तीन सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। समझे, ये घुड़सवार, आइए इसके ऊपर विचार करें। यदि आप पहले घुड़सवार पर ध्यान देंगे वो कौन था, और बीती रात्रि हमने पाया वचनानुसार दूसरा घुड़सवार ठीक वही पुरुष है, केवल वो दूसरे घोड़े पर है। क्या हुआ, उसने अपनी सेवकाई बदली। ठीक है, हमने पाया वो एक मसीह विरोधी है और उसने अपनी स्थिति बदल दी। हम पाते हैं कि वो जब पहले बस एक सफेद घोड़ा था वो एक शिक्षा बन गया। अब हम हर एक को वापस वचनों में ले जाते हैं, समझे। अब ध्यान दें, आज रात्रि हम कहाँ पर हैं? वो दूसरा कलीसिया युग, अब समझे। अब हम तीसरे कलीसिया युग पर आ रहे हैं, समझे, ठीक तीसरे कलीसिया युग पर। वो ठीक तीसरे घोड़े के समान है, समझे। अब पहला कलीसिया काल ये क्या था, निकोलाइयों के पास एक शिक्षा थी। देखिए, बस पहला वाला ठीक है, और फिर पहली बात हम जानते हैं कि ये निकोलाइयों की शिक्षा, इसे अनुमति दे दी गई कि ठीक थी और व्यवहार में आ गई, और उन्होंने इस मनुष्य को ताज पहनाया। तब ये आत्मा मसीह विरोधी एक मनुष्य में अवतरित हो गई, समझे। और हम पाते हैं बाद में वो शैतान का भी अवतार हो गया, प्रेत चले गए और शैतान अंदर आ गया। और जैसे कि ये कलीसिया इस प्रकार की है, मसीह विरोधी कलीसिया उन्नति करती है, इस प्रकार दुल्हन दूसरी चीजों के साथ आती है, न्याय उचितता, पवित्रकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से होती हुई और आगे बढ़ती जाती है। देखिए इस प्रकार से, केवल उन्होंने पहले अपनी बेदारी को लिया और कलीसिया इसे अंत में ले रही थी। उनके पहले तीन वर्ष, उनकी पहली तीन स्थितियाँ जो कि अंधकार के युग से निकली, तब तीसरी तीन स्थितियाँ कलीसिया को बाहर लेकर आती हैं, न्याय उचितता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परमेश्वर के अवतरण में, कि ये हमारे मध्य में प्रकट हो। यहाँ वो अंदर आता है एक मसीह विरोधी के समान, एक झूठे भविष्यद्वक्ता के समान, फिर पशु, तब अंधियारे युग में, और कलीसिया उस अंधकार के युग से बाहर आती है, न्याय उचितता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अवतरित वचन, अब जो मार्ग है, और वो नीचे बढ़ता जाता है। ओ, आप इसे देखते हैं, वो नीचे बढ़ता है, कलीसिया ऊपर जाती है, ये उतनी ही सिद्ध है जितनी हो सकती है। ओ, ये सुंदर है, मैं बस इससे प्रेम करता हूँ। ये घुड़सवार वही वाला है, परंतु अपनी सेवकाई की दूसरी स्थिति में। पहली स्थिति एक सफेद घोड़ा, देखिए बस एक शिक्षक है, बस एक मसीह विरोधी शिक्षक, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और अब आप कैसे मसीह विरोधी हो सकते हैं? कोई भी जो इस बात का इनकार करता है कि इसका हर शब्द सच्चा नहीं है और उसे वैसा ही सिखाए, वो एक मसीह विरोधी है, क्योंकि वे वचन का इनकार करते हैं और वो वचन है। अब पहली स्थिति सफेद घोड़ा, वो बस एक शिक्षक था, परंतु एक मसीह विरोधी आत्मा उस शिक्षा में थी, और उसकी गुणवत्ता वो हानिकारक था, वो कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था, ऐसा प्रतीत हुआ, बस चलता रहा। शैतान इसी प्रकार से अंदर आता है, वो चालाक चिड़िया है। उसने हवा को बताया, कहा, अब आप जानते हैं कि आप बुद्धि की खोज में हैं, सही और गलत क्या है आप नहीं जानते। कहा, अब यदि आपकी आंखें खुल गई थीं, तो आप जानते कि क्या, और कहा, फल बहुत मनभाऊ है, ये अच्छा है, ये आंखों को भाता है, अब तुम्हें ये ले लेना चाहिए। आप नहीं जानते कि ये है या नहीं, क्या आप नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर ने कहा कि इसे ना करना, परंतु ओ भाई मैं जानता हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा वो हम मर जाएंगे। उसने कहा निश्चय ही ये नहीं होगा, देखिए जितना मीठा हो सकता है, देखिए इसने क्या किया। ध्यान दें, ये मसीह विरोधी आत्मा आरंभिक कलीसिया के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। निकोलाइयों की एक शिक्षा, निकाओ जीतना जनसाधारण, एक पवित्र मनुष्य बनाओ, ओ ये तो भाई हम बस संगति चाहते हैं, तुम क्यों यहाँ बिखरे हुए हो, कोई नहीं जानता कौन कहाँ है। मैं सोचता हूँ हम सबको संस्थागत हो जाना चाहिए और भिन्न रहें। देखिए हम जाते हैं और अपने आप को इकट्ठा करते हैं, इसमें हमें एक सराय बना लेनी चाहिए, और यही जो है मेथोडिस्ट की मसीह कलीसिया, ऐसी कोई चीज नहीं है, वो कोई कलीसिया नहीं है, वो एक सराय है। बैप्टिस्ट ये कोई कलीसिया नहीं है, ये एक सराय है, केवल एक ही कलीसिया है और वो यीशु मसीह की रहस्यमय देह और आप उसमें जन्मे हैं। ये ठीक बात है, पहले से ठहराए जाने के द्वारा, ये ठीक बात है। ये सब जो पिता ने मुझे दिया मेरे पास आएगा, कोई नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना बुलाए, और सब जो उसने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। इसलिए वो यही बात है, वो बस मेमना वहाँ बैठता है, बिचवाई कर रहा है जब तक कि अंत वाला अंदर ना आ जाए। छोटी छोटी घंटी बजती है और वो बाहर आकर और तब अपना अधिकार लेता है। देखिए, यही कुल मिलाकर है, अपनी कलीसिया को घर लाता है, अपनी प्रजा को, अपने शत्रु को आग की झील में डाल देता है और उसके लोग उसके साथ भीतर चले जाते हैं। यही है, तब हम सहस्र शताब्दी में बाहर आते हैं। अब वही घुड़सवार, पहली स्थिति वो निर्दोष था, दूसरा, अब यदि आप थोड़ा ऊंचा जाना चाहते हैं, इससे थोड़ा और ऊंचा, दूसरी स्थिति, बाइबल ने कहा उसे एक ताज दिया जाएगा और उन्होंने एक मनुष्य को ताज पहनाया, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, देखिए उसे ताज पहनाया, और फिर बाइबल ने उसे पोप नहीं कहा, बाइबल ने उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहा। क्यों? जी हाँ, निसंदेह उसे झूठा भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, अपने उस मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा, उस मसीह विरोधी ने मूल वचन के विरुद्ध सिखाया, क्योंकि यदि वो मूल वचन के विरोध में सिखाता है तो ये मसीह विरोधी है। ये था और वचन परमेश्वर था, देखिए मसीह, ठीक है। अब इसके पश्चात उसे ताज पहने हुए पाते हैं और जब उसे ताज पहना दिया जाता है, अब वो बहुत ही अबोध और असहाय है, वो बस एक छोटा व्यक्ति है। परंतु जब नीसिया सभा में उसे ये बनाया और कॉन्स्टेंटाइन ने उसे सारी संपत्ति दी, और तब उसने क्या किया, तब वो देखिए, शैतान ने उसे अपना सिंहासन और अधिकार दिया। बाइबल ने ऐसा कहा, जैसा कि हम इसमें होकर निकल चुके हैं। अब अगली चीज हम पाते हैं कि शैतान सारी राजनीति का नियंत्रण रखता है, जो कभी भी रही या कभी होगी। ये हम मती 4:11 में पाते हैं, और अब हम पाते हैं, तब वो शैतान, उसके पास पहले ही राजनीति है, परंतु वो कलीसिया को लेने का यत्न करता है, इसलिए वो इसे धोखा देने के लिए जाता है। परंतु उसके पास उसका श्रेष्ठ मनुष्य है, उसे संस्था में कार्यरत करता है और उसे मसीह प्रतिनिधित्व का ताज पहनाता है, मसीह परमेश्वर के बदले कार्य करता है। ये व्यक्ति एक प्रतिनिधि है, ये परमेश्वर के बदले में, समझे, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के बदले में उसे क्या होना चाहिए, एक प्रतिनिधि मसीह की अधीनता में। अब जब उसने ये किया, तब उसने क्या किया, वो शैतान ने उसकी राजनीतिक शक्ति को ले लिया, जो कि उसके पास पहले ही है, और धार्मिक शक्ति ले ली, जिसके लिए उसे पहले ही ताज पहना दिया, और दोनों को एक साथ मिला दिया। तब उसने उसे दूसरा नरक का अधिकारी बना दिया, और वे जो उसमें बंद हैं, यदि वे पर्याप्त पैसे का भुगतान करेंगे तो वो उन्हें बाहर निकाल देगा, समझे। इसलिए वो स्वर्ग के ऊपर प्रतिनिधि है, शोधक स्थान के ऊपर, जैसा कि वो इसे कहता है। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, देखिए, परंतु इसे कुछ बनाना है। बाइबल कहती है ये अथाह गढ़े से आता है और उसी प्रकार से वापस चला जाता है, और पृथ्वी पर एक शासक है। अब फिर उसे क्या दिया गया, पहले उसके पास एक धनुष था, परंतु उसके पास कोई तीर नहीं था, परंतु अब उसके पास शक्तिशाली तलवार उसके हाथ में है, अब वो कुछ कर सकता है। तब वो अपने सफेद घोड़े से उतरता है, सफेद घोड़े का घुड़सवार चला गया, अब किस लिए टांगे चौड़ा कर खड़ा है, एक लाल घोड़ा, लहू, खूनी लाल घोड़ा, वो वास्तव में उस पर है। ओ निश्चय ही अब उसे बड़ी सामर्थ्य दी गई है और एक बड़ी तलवार की घात करे, तब वो अपने खूनी लाल घोड़े पर सवार होता है। हम दूसरी मोहर से देखते हैं कि जो कि पिछली रात्रि तोड़ी गई, उसने पृथ्वी पर से शांति उठा ली और एक दूसरे को मारा, और उसकी अपनी शहीदों की पुस्तक रोमन कैथोलिक कलीसिया की इस बात को दिखाती है कि 6,80,00,000 प्रोटेस्टेंटों को घात किया है। संत हिप्पो के समय से, हिप्पो के संत अगस्तीन के बाद से 1580 के लगभग तक 6,80,00,000 शुमकर की ग्रेट रिफॉर्मर, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, बल्कि ग्लोरियस रिफॉर्मर, देखिए, अब 8,80,00,000 का अभिलेख शहीद नामे में, जब उनके एक कहलाने वाले संत को प्रकाशन मिला कि कोई भी जो रोमन कलीसिया से असहमत है तो उसे विधर्मी के समान मर जाना चाहिए, बजाय कि उन्हें आसपास बैठाएं। लड़के, वे लहू बहाते रहे, वो अपने सफेद घोड़े पर चढ़ा, अपने लाल घोड़े पर, और सवारी करता चला गया। अब उसकी महान सामर्थ्य आती है, वो स्वर्ग का प्रतिनिधि बन गया था और परमेश्वर के समान उसकी आराधना की गई, पृथ्वी का शासक, कलीसिया और राज्य को एक साथ मिलाने के द्वारा उसे पृथ्वी का शासक बना दिया गया, इस पर उसे ताज दिया गया। वो अग्नि शोधक के बाहर प्राणों के लिए प्रार्थना कर सकता था, वो मध्यस्थता भी कर सकता था। वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के समान था, परमेश्वर के बदले। कुल मिलाकर उसके पास महान सामर्थ्य थी जो कि उसकी आज्ञा से सहमत ना हो, चाहे जिसे मार डाले। कौन उसे कुछ भी कहने वाला है? कलीसिया कुछ नहीं कह सकती, वो उसका प्रधान है। राज्य कुछ नहीं कह सकता, वो उसका अध्यक्ष है। इसलिए वे करोड़ों मारे गए, वे सारी छोटी छोटी कलीसियाएं, भाई वे टूट कर बिखर गईं और मार डाली और घात की गईं और सिंहों को खिला दी और सब कुछ, समझे? वो सांप रोम ने उसे उसकी गद्दी और अधिकार दिया, बाइबल ऐसा कहती है, समझे? इसलिए वो अपने प्रतीक पर चढ़ा, लाल घोड़ा, मनुष्य के लहू से होते हुए, जब तक कि वो एक लाल घोड़ा नहीं हो गया। अब यूहन्ना उसे काले घोड़े पर देखता है, उसने कुछ बदल दिया है। अब मुझे वैसा ही कहना है जैसे ये मेरे पास आया है, और फिर यदि ये मेरे पास आता है और बाकी वचन के साथ मिला नहीं होता, तो फिर ये कभी भी परमेश्वर ने नहीं दिया है। वचनों को देखिए, होना है हर एक, ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी चीज है। वचन को वचन के साथ सहमत होना है, और कोई भी चीज जो वचन के विरुद्ध है, यदि प्रभु के उस स्वर्गदूत ने मुझे कुछ भी बताया जो कि वचनानुसार नहीं था, तो मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा, समझे? उस दिन मैंने शिकागो में कहा था, जब वे सैकड़ों सेवकगण, क्या कोई वहां सभा में था? निश्चय ही वो शिकागो की सभा में। मैंने कहा, अब आप सब वे बातें करते हैं जो आपके पास हैं। आपने सोचा आप इसमें से मुझे घुमा देंगे किसी चीज पर, जैसा कि ये अब इस कमरे में है। मैंने कहा, ये क्या है तुम्हारे पास मेरे विरोध में है? मैंने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखा दिया 3 रात्रियों पहले कि कौन कहाँ पर होगा, और हम उसमें नहीं होंगे। कल से पूछें यदि ये ठीक बात नहीं है। और वहाँ हैंक और वे सब थे, ये ठीक बात है, आप सब वहाँ सुनने के लिए थे। मैंने कहा, अब आप लोग मेरी शिक्षा पर मेरे विरोध में हैं, यही मामला है। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से एक यहाँ आए और अपनी बाइबल लेकर मेरे पास खड़ा हो और इसे निरस्तर करे, ये सबसे शांत झुंड जो कभी आपने सुना। मैंने कहा, आप लोगों के साथ क्या मामला है? मैंने कहा, तब यदि आप जानते हैं कि आप वचन के विरोध में खड़े नहीं रह सकते हैं, तो फिर मेरा पीछा छोड़ो। आप दिव्यता के डॉक्टरों और सब कुछ, और कैसे बातें कर रहे हैं, अपना परिचय डॉक्टर के समान करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, और मैं एक हूँ, ओ भाई वुड्स, और मैं कहता हूँ हम अनुभव रहित हैं, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, कभी किसी धर्म विद्यालय से होकर नहीं आया, परंतु आप अपनी बाइबल लेकर यहाँ आए और मेरे बराबर में खड़े हों और सर्प वंश को गलत सिद्ध करें और यीशु के नाम के बपतिस्मे को या किसी भी उस बात को जो मैं सिखाता हूँ, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आप सब ये जानते हैं, वो सबसे शांत झुंड जो आपने कभी देखा होगा। देखिए, वे बस कौए के समान, मैं नहीं जानता क्या। अब ये यहाँ है, मैं लोगों से वाद विवाद में विश्वास नहीं करता, परंतु जब ये उस स्थान पर आता है जहाँ वे आपको इसमें घसीटना चाहते हैं, और मैं तो नहीं जाता, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वहाँ जाओ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। उन्हें समय से 3-4 दिन पहले बता दिया, आप सब वहाँ थे और श्री कार्लसन और उन्होंने सुना और टॉमी हिक्स और वे सारे वहाँ बैठे थे, और मैं 3 दिन पहले गया और मैंने कहा कि आप उस स्थान को रद्द करने जा रहे हैं। ये तूफानी रात थी, मेरी एक सभा थी, उसने कहा जाकर खिड़की के पास खड़े हो और वहाँ तीसरे छोटे द्वार पर, और मैं वहाँ गया और वहाँ खड़ा हो गया। मैंने इस प्रकार से बाहर देखा, उसने कहा उन्होंने तेरे लिए फंदा लगाया है, वे तुझसे कहने जा रहे हैं कि आपको ग्रेटर शिकागो के सेवक गणों की सभा में बोलना है। कहा कि उन्होंने तेरे लिए फंदा लगाया है तेरी शिक्षा पर जो मेरे वचन की है। उसने कहा अब कैसे वो उस स्थान को रद्द करने जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं मिलेगा, उन्हें वो जगह मिलने वाली है जहाँ ये भूरा है। कहा यहाँ ये दिखता है। मैं रुका और मैंने अपने आप को कोने में देखा, पीछे मुड़कर देखा और दिखाई दिया, मैं उन सबको वहाँ देखा, मैंने उन सारे सेवक गणों को वहाँ पर बैठे देखा जिस प्रकार वे थे, मैंने उन सबको देखा। और उसने कहा ओ मैंने सोचा तो प्रभु अच्छा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ, यदि वो ये करने जा रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं या कुछ गलत करूं। उसने कहा जा, मैं तेरे बराबर में खड़ा हूंगा। वो हुआ, ये ठीक बात है। अब आप सारे यहां पर गवाह हैं जो वहां बैठे थे और जानते हैं कि ये सच बात है, ये ठीक है। भाई आपके पास टेप भी है, परंतु आप वही हैं, आपने देखा। अब वहाँ ये भेद है इसका, और अब ये जब ये मुझ पर बहुत प्रातः प्रकट हुआ दिन के उजियाले से पहले, तब मैं जल्दी ही वचन में गया और देखने लगा, इसे ढूंढा, ये वहाँ पर था। जहाँ तक है उनमें से तीन पूरी रीति से अलौकिक रूप में प्रकट हुई। जी हाँ, अब यहाँ काले घोड़े का भेद है जो ये है, इसके अनुसार जो मुझ पर प्रकट हुआ, उसने उस पर अंधेरे युगों के समय में सवारी आरंभ की। यही जो काला घोड़ा दर्शाता है, अंधेरे युग, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय सच्चे विश्वासी के लिए था जो बचा था। अब उस कलीसियाई युग पर ध्यान दें, वो मध्य कलीसियाई युग, वो अंधेरा कलीसियाई युग, ध्यान दें, वो कैसे कहता है, तेरे पास थोड़ी सी सामर्थ है। उनके लिए ये मध्य रात्रि थी सच्चे विश्वासी के लिए। अब ध्यान दें, व्यवहारिक रूप में सारी आशा सच्ची कलीसिया से ले ली गई थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने कलीसिया और राज्य दोनों का नियंत्रण ले लिया। वे क्या करने जा रहे थे? देखिए, कैथोलिक वाद ने नियंत्रण ले लिया कलीसिया और राज्य दोनों का, और सारे वे जो कैथोलिक वाद से सहमत नहीं थे मार डाले गए थे। यही कारण है कि वो काले घोड़े पर था। और ध्यान दें, उसने क्या काले कारनामे किए, देखिए, तब आप देख सकते हैं। और आप बस, यदि आप अपना इतिहास जानते हैं तो इसे देखें, तब आप, अच्छा, आपको जानना भी नहीं पड़ेगा कि ये जाने। अब ध्यान दें, सारी आशाएं समाप्त हो गई। यही उसका काला घोड़ा है। अब ये अपने सफेद घोड़े पर सवार है, धूर्त। तब उसे सामर्थ्य दी गई, उसने शांति उठा ली, लाखों को मौत के घाट उतार दिया। यही जो वो करने जा रहा है, जैसे कि सवार होकर निकलता है, और वो अब भी यही करता है, समझे। अब ये यहाँ काले घोड़े पर सवार है, आ रहा है अंधेरा युग। ये वो समय था, लगभग वो समय जब कलीसिया स्थिर हुई और सामर्थ्य में आई। उन्होंने हर चीज का गला घोंट दिया और सैकड़ों सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष निकलते चले गए, जो कि हर पढ़ने वाला इसे अंधेरे युगों के समान जानता है। कितने इस बात को जानते हैं? निश्चय अंधेरे युग, यही आपका काला घोड़ा है, अंधकार के युग का प्रतिनिधित्व करता है। अब सारी आशाएं जाती रहीं, बिल्कुल कोई आशा नहीं, हर चीज काली दिखाई पड़ी उन छोटे विश्वासियों के लिए। अब यही कारण है कि ये कहलाया काले घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है। उसका तराजू या उसका तौलने वाला उसके हाथ में है। आप देखिए, पुकार रहा है, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का तीन सेर जौ। देखिए, वास्तव में ये गेहूं और जौ है, जीवन के लिए प्राकृतिक पदार्थ, यही जिससे रोटी और चीजें बनती हैं। परंतु आप देखिए, वो इसके लिए दाम ले रहा है। इसका क्या अर्थ है कि वो अपने लोगों से दाम ले रहा है, जीवन की एक प्रकार की आशा जो वो उनके पास भेज रहा है बनाने के द्वारा। ये उसने ठीक उसी समय आरंभ किया कि प्रार्थनाओं के लिए भुगतान करें, प्रार्थना के लिए दाम ले। वे अब भी ये करते हैं, नोविनास, क्योंकि वो क्या कर रहा था, संसार का धन एकत्र कर रहा था। तराजू तौल रहा है, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का तीन सेर जौ। काला घुड़सवार वो क्या बना रहा था, अपनी प्रजा के लोगों को पैसों से नंगा कर रहा है। जब बाइबल भविष्यवाणी करती है कि वो थामे है संसार के धन के विषय में, जैसा कि बीती रात हमने रूस के विषय में कहा, और वो सारा, इन्होंने बस सारे पैसे ले लिए और लोगों को हर चीज के लिए जो उनके पास था छूछा कर दिया, इसलिए आप यही हैं। अब ध्यान दें, अब देखिए कहाँ से ये कलीसिया में पैसे लेने आया। इस चीज से दूर रहो कि एक संस्था बनाए, एक बड़ा कुछ लाखों डॉलर का, और आप देखिए इसकी माँ क्या है। धन्यवाद प्रभु आपका, ओ प्रभु, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये उसका अनुग्रह रहा, बस ठीक है, ठीक है। ये मध्य रात्रि का समय था, क्या आप इसे समझते हैं? और यहाँ वो एक प्रकार के जीवन के लिए वसूली कर रहा है, यही उसका जौ और प्राकृतिक चीजें हैं, आत्मिक नहीं था, अब ये जौ था, इसलिए देखिए, और जौ की रोटी और गेहूं की रोटी। वो इस प्रकार के जीवन के लिए पैसे वसूल रहा है जो वो अपने लोगों को दे रहा है, पादरियों के द्वारा प्रार्थना के लिए दाम ले रहा है कि लोगों को अग्निशोधक से बाहर निकाले। अब मैं ये सब इतिहास में से ले रहा हूँ, भुगतान ले रहा है। मैं समझता हूँ ये नोवीना है, और मैं समझता हूँ हर कोई जानता है क्या है नोविना। मेरा अनुमान है कि ये कुछ जो आपको करना है, आप जानते हैं कुछ तपस्या, किसी को इसके लिए भुगतान लेना है। संसार के धन को अपने पास ला रहा है, अपने पास कलीसिया में अपने पास, और वो सब भी सवारी कर रहा है। ओ निश्चय ही वो है। जी हाँ श्रीमान, वो अब भी सवार है। ध्यान दें, अब यहाँ ये अच्छा वाला भाग है। ध्यान दें, देखिए, तू दाखरस और तेल की हानि ना करना, वहाँ पर थोड़ा सा ही बचा है, परंतु तू इसे ना छूना। अब तेल और आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का। यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ पद दूंगा। दो वचन है, लेवी व्यवस्था 8:12, जहाँ हारून इसके पहले कि वो अंदर जाए उसका तेल से अभिषेक करना होता था, आप जानते हैं, और जकरिया 4:12 में तेल नालियों में से होकर उंडेला जा रहा है और कहा कि ये मेरा आत्मा है तेल। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं तो देखिए मत्ती 14:25, वहाँ एक मूर्ख कुंवारी थी, या 25:3, मूर्ख कुंवारी के पास तेल नहीं था, आत्मा नहीं, और मत्ती 25:4, समझदार कुंवारी के पास तेल उसकी कुप्पी में था, आत्मा से भरी हुई। आत्मा, तेल आत्मा का प्रतीक है। ओ महिमा हो। ठीक है, आप इसे समझ गए? ठीक है, अब तेल आत्मा को दर्शाता है और दाखरस प्रकाशन की उत्तेजना को दर्शाता है। ओ मैं सारे स्थान में भागना चाहता हूँ। आश्चर्य है कि मैंने पड़ोसियों को नहीं जगा दिया जब प्रभु ने मुझे ये दिखाया। देखिए, प्रकाशन की उत्तेजना, समझे? बाइबल में तेल और दाखरस सदा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। मेरे पास शब्द अनुक्रमणिका है और देखा वहाँ इसका सिलसिला है, जो इस प्रकार का, इस प्रकार से, जहाँ दाखरस और तेल सारे समय एक साथ चलते हैं, समझे? जब परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन का सत्य सच में उसके दासों के ऊपर प्रकट हुआ, जो कि तेल से भरे हुए थे, दाखरस एक उत्तेजना है। महिमा हो, मैं इस समय अनुभव कर रहा हूँ, आनंद से उत्तेजित है, चिल्लाना, समझे? और जब ये करता है उनके ऊपर इसका वही प्रभाव होता है जो दाखरस स्वाभाविक मनुष्य पर करता है। क्योंकि जब परमेश्वर के सत्य का प्रकाशन दिया गया और सच्चा विश्वासी तेल से भरा है और प्रकाशन प्रकाशित किया गया, उत्तेजना इतनी अधिक हो गई कि उससे असामान्य व्यवहार करवाया। ठीक है, महिमा हो। देखिए, उनके साथ अब यही मामला है। ये ठीक बात है कि उनसे अप्रतिमानत व्यवहार करवाता है। अब यदि आप इसके लिए वचन चाहते हैं, तो प्रेरित 2 पढ़ना आरंभ कर दें। वे कहाँ थे? उनके पास दी हुई प्रतिज्ञा थी। जब पवित्र आत्मा की सारी प्रतिज्ञा उन पर उंडेल दी गई और इसका वचन के द्वारा समर्थन हुआ। अब आप देखिए, क्या हो यदि उन्होंने कहा अब प्रतीक्षा करो? उसने हमसे प्रतीक्षा करने को कहा यहाँ हमारी सेवकाई के लिए। अब 8 दिनों के बाद उन्होंने कहा होगा, भाई लड़कों, मैं तुम्हें बताता हूँ, मरकुस ने मत्ती से कहा, मैं विश्वास करता हूँ, हम इसे पा चुके हैं। साथियों, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? देखिए, हमने पहले ही पा लिया है, जबकि हम अपनी सेवकाई में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें बाहर चले जाना चाहिए प्रचार के लिए। उसने हमसे यहाँ आकर प्रतीक्षा करने को कहा है और आज ये 8 दिन हो गए हैं, हम यहाँ पर हैं। अच्छा, एक और दिन प्रतीक्षा करते हैं। 9 दिन हो गए, तब मरकुस आया, या हो सकता है उनमें से एक यूहन्ना बोला, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ कि हम पहले ही पा चुके हैं, क्या आप नहीं? तब मैं शमौन को देख सकता हूँ, क्योंकि उसके पास कुंजी थी, आप जानते हैं। अब लड़को, एक मिनट रुको, वचन में इसके लिए कुछ कहा गया है। उसने हमसे ये कभी नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है। उसने कहा आप यहीं ठहरो, जब तक आप वहीं रुको, जब तक कि योएल की भविष्यवाणी घटित ना हो जाए, जब तक यशायाह की भविष्यवाणी सिद्ध ना हो जाए, क्योंकि थरथराते होंठों और अन्य भाषाओं के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगा, ये ताजगी है, ये वो दाखरस है जो उंडेला गया। दाखरस क्या है? प्राण संचार। ये वो ताजगी है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, समझे? ये तो अब वचन के अनुसार हो गया, समझे? इसलिए आप देखिए, दाखरस प्रकाशन की उत्तेजना का प्रतिनिधित्व करता है। और जब पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने परमेश्वर की आग को अपने ऊपर उतरते देखा, ओ, इसने उन्हें उत्तेजित करना आरंभ कर दिया। और पहली बात आप जानते हैं कि वे इतने उत्तेजित हो गए जब तक कि लोगों ने ये नहीं सोच लिया कि वे पिए हुए हैं, परंतु वे तो प्रकाशन से उत्तेजित थे परमेश्वर के द्वारा। ये यहाँ है, परमेश्वर के प्रमाणित प्रकाशन ने उन्हें स्पष्ट कर दिया। वे इस विषय में आनंदित थे, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा दी है। यहाँ ये उन पर प्रकट हुआ और उन्हें प्रमाणित किया। आमीन। ये एक मनुष्य खड़े हुए कह रहा था, यही है वो, यही है वो। और वो वहाँ था, उसी चिन्ह के द्वारा समर्थित किया जा रहा था जो आज हमारे पास है। वहाँ है, वहाँ प्रकाशन के द्वारा उत्तेजना है, समझे? और अब उनके पास ये तब था। यही कारण है कि पतरस वहाँ बाहर निकला और कहता है, क्यों तुम यहूदिया के मनुष्यों और तुम जो यरूशलेम में रहते हो, मेरी सुनो। तुम सारे दिव्यता के डॉक्टरों जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी सुनो। देखिए, ओ कितना आश्चर्यजनक, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। वे इतने उत्तेजित हो गए जब उन्होंने देखा कि ये समर्थित है। वे इतने उत्तेजित हो गए, और यही सदा होता है, ये सदा करता है। जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि इस दिन में कुछ निश्चित चीजें करें, जब उसने इस अंत के दिन में मोहर तोड़ने की प्रतिज्ञा दी है, और आप आनंद और महिमा को नहीं जानते, जब मैंने उसे ये प्रकट करते हुए देखा, वहाँ खड़ा हुआ और घटित होते देखा। और जानते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को लूंगा कि वसूल करूं, उसने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा, इस तरह चाहे जो हुआ। और तब उस आनंद को देखिए जो मेरे हृदय में है, जब मैं उसकी प्रतिज्ञा को इस अंतिम दिन में देखता हूं, जैसा कि उसने करने के लिए प्रतिज्ञा दी है। और यहां मैं इसे प्रमाणित होते हुए देखता हूं और बिल्कुल सही बनाता हूं। मैं बस, आप मुझे कहते हुए सुनते हैं, मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूं, यही जो मामला है। उत्तेजना इतनी खराब होती है कि मैं बस काटने के लिए तैयार था। अब जानते हैं, उत्तेजना प्रकाशन से, ठीक है। वे प्रकाशन पर इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने प्रतिज्ञा को सही प्रमाणित कर दिया। अब ओ प्रभु, वहाँ उत्तेजना का आनंद फूट पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने कहा वे नई मदिरा के नशे में हैं, जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा उन पर प्रकाशित की। और उसने केवल ये प्रकट ही नहीं किया, परंतु उसने इसे सिद्ध किया। यही जो मैंने हमेशा कहा, एक मनुष्य कुछ भी कह सकता है, जी हाँ, वो कुछ भी कहने के लिए सुयोग्य है। परंतु जब परमेश्वर आसपास आता है और इसका समर्थन करता है, अब बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे बीच कोई है जो आत्मिक या भविष्यद्वक्ता होने का दावा करता है, यदि वो इन बातों को कहता है और ये घटित नहीं होती, तो उस पर ध्यान ना दें, उससे बिल्कुल ना डरें, उस मनुष्य से ना डरें। परंतु यदि वो ये कहता है और ये घटित हो जाता है, ये मैं हूँ। अब देखिए, मैं उसमें हूँ, ये सिद्ध करता है, क्यों, ये मैं हूँ। और फिर वो छोटी सामरी स्त्री, जब वचन ने कहा कि ये मसीह इन बातों को करेगा, और वहाँ वो खड़ा है और ठीक वैसा ही किया जैसा पवित्र वचन ने कहा। उसने कहा वो ये है, आओ एक मनुष्य को देखो, क्या ये ठीक वही चीज नहीं जो कि वचन ने कहा घटित होगा? देखिए, वो प्रकाशन से उत्तेजित हो गई, क्या ये ठीक बात है? वो प्रकाशन से उत्तेजित हो गई जब ये प्रमाणित हो गया, समझे? ये ठीक बात है। वो जानती थी कि वहाँ था। हम जानते हैं कि मसीह आ रहा है जो कि मसीह कहलाता है, और जब वो आता है तो वो ये चीजें करेगा। उसने ये देख लिया और उसने कहा मैं वही हूँ। तब उत्तेजना आरंभ हो गई और वो चिल्लाती हुई भागी और सारे नगर में होकर, और उसने अपना पुराना बर्तन छोड़ दिया और वहाँ चली गई और लोगों से कहा आओ देखो। अब यदि आप पूर्वी रीति रिवाजों को जानते हैं, उसके लिए ऐसा करना गलत था। जी हाँ श्रीमान, एक इस प्रकार की स्त्री उसकी कोई नहीं सुनेगा। नहीं श्रीमान, देखिए उसके ऊपर एक धब्बा था, और जब वो यदि वो इस प्रकार से सड़क पर जाएगी और इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो सड़क के लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। परंतु भाई उसके पास वहाँ जीवन का वचन था, वो उत्तेजित हो गई थी। आप सके ये इस प्रकार का था कि तेज हवा के दिन घर में आग लगा देना। ओ वहाँ कुछ है जो इसे हवा दे रहा है। वो थी, वो तैयार थी। जी हाँ, उसे बाहर नहीं निकाल सके। वो परमेश्वर की आग थी जो जल रही थी। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करते कि ये ऐसा है तो बस आप वहाँ आ जाएं जहाँ सभा चल रही है, मैं ये तुम्हें दिखा दूंगा। जी हाँ यही है। जी हाँ श्रीमान, और इसलिए लोग वहाँ निकल कर आए और उसने ये एक बार और नहीं किया, परंतु वे जान गए कि इस स्त्री को कुछ हुआ है, वो बदल गई, इसलिए उन्होंने उसका विश्वास किया। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने उस पर विश्वास किया, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। और ध्यान दें, ये वास्तविक होता जा रहा है, क्योंकि ये बीज है और जब ये बोया गया तो ये जीवन को लेगा, तो ये उस चीज को उत्पन्न करेगा जो ये बातें कर रहा है। यदि ये नहीं होता तो ये परमेश्वर का बीज नहीं है, या फिर बोने वाला नहीं जानता कि इसे कैसे बोएं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया कि बीजों को बोए। हो सकता है वो बो रहा है उन चट्टानों के ऊपर था, ऐसा कुछ समझे। इसलिए आप देखिए, बीज बोने वाला बीज बो रहा है, परमेश्वर इसकी चिंता करता है कि सही जगह पर गिरे। आप देखिए, ओह प्रभु, तो वो इस काले घुड़सवार से क्या कहता है, तू मेरे दाखरस और मेरे तेल की हानि ना करना, तू इसे मत छूना, मेरा दाखरस और तेल मेरे पास इसका थोड़ा से वहाँ पर है, परंतु वहाँ अब भी थोड़ा सा बाकी है। जी हाँ, अब तू इसमें से होकर निकलता जा सकता है और इस सब प्रकार के जीवन को नाप सकता है जो तूने वहाँ रखा है। ये तुझ पर है, तुझे वहाँ इसका भुगतान करना होगा, परंतु जब तू दाखरस और तेल पर आए तो इसे छोड़ देना। ओ प्रभु, यदि तू सके, यदि तू इस प्रकार से, दूसरे शब्दों में, यदि तू मेरे किसी छोटे झुंड को पकड़े जो मेरे तेल से भरा हो और दाखरस से, देखिए दाखरस और तेल शुद्ध वचन का, देख, और तू उन्हें मारने जा रहा हो, क्योंकि तू ये कर रहा है, यही जो तू कर रहा है, तो तू उन्हें मरियम की जय कहने के लिए बाध्य नहीं करना या इस प्रकार की कोई चीज करना, ये तुम्हारे कोई मतसार, तू अपने हाथ उनसे अलग रखना। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वे मेरे तेल से अभिषिक्त हैं, और मेरे तेल से अभिषिक्त होने के कारण उनके पास आनंद का दाखरस है, क्योंकि वे मेरी प्रतिज्ञा के वचन को जानते हैं। मैं उन्हें फिर से उठा खड़ा करने वाला हूँ, उनकी हानि ना कर, तू उन्हें कष्ट देने का यत्न ना कर, क्योंकि इससे अलग रहना नहीं। सारा वो अपना वचन प्रमाणित करता है और इसे अंदर लाता है। वे जान गए कि वे फिर से जी उठेंगे। ओ कैसे मुझे ये पसंद है, वे सब फिर से जी उठेंगे। यहाँ ये काला घोड़ा आता है, अब सवारी कर रहा है, अंधेरे युग, वहाँ सफेद घोड़ा निकला, हमने ठीक ठीक देखा उसने क्या किया। यहाँ लाल घोड़ा आता है, हम देखते हैं उसने ठीक क्या किया। यहाँ काला घोड़ा आता है, आप देखते हैं सारे समय वही एक घुड़ सवार है, इन युगों में से निकलते हुए वो क्या कर रहा है। अब हम पाते हैं कि वो इसे तोलता है और इसका दाम लेता है, बिल्कुल ठीक, गेहूं, स्वाभाविक जीवन, यही जिस पर वे जी रहे थे, परंतु प्रतीक आत्मा, तेल और दाखरस का आनंद। वो आत्मिक जीवन, इसकी हानि ना कर, इसे छोड़ दे, वरना रोम, इसे ना छूना, ये मेरा है। अब ये मेरे पास एक चीज है, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, ध्यान दें, ये चारों प्राणियों में से नहीं था जिसने कहा कि तेल और दाखरस को नहीं छूना। क्या आपने ध्यान दिया, वे चार प्राणी बात कर रहे थे, परंतु ध्यान दें, मैं यहाँ जरा इसको पढ़ दूँ, बस थोड़ा सा देखिए। अब तौल एक दिनार के लिए, दिनार का गेहूं और दिनार का तीन सिर जौ, और देख तू दाखरस और तेल की हानि ना करना। अब यहाँ सुनिए, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, ये क्या था, वो मेमना, आमीन। ये चार प्राणी नहीं थे, मेमने ने ये कहा, क्यों, वो अपनों को लेने जा रहा है जो उसके हैं, इसने उसे छुड़ा लिया, समझे, आमीन। तू उस तेल को न छूना, नहीं श्रीमान, न कि चारों प्राणी, परंतु मेमना ही था जिसने ये कहा। और ओ प्रभु, वो मेमना, न कि चारों प्राणियों ने इसकी घोषणा की, ये स्वयं मेमने ने कहा। जब चारों प्राणियों ने कहा आ और देख और बढ़े, और उन्होंने इस प्रकार से देखा, और उसने कहा दिनार का सेर भर गेहूं और इतना इस प्रकार से और इतना जौ। परंतु तब मेमना उनके बीच में से चिल्लाया, कहा परंतु दाखरस और तेल की हानि ना कर। ओ ये ठीक बात है, ओ प्रभु इसे सुने, तू इसकी हानि ना कर लड़के, या फिर तू किसी दिन इसका भुगतान करने जा रहा है। ओ प्रभु 9:30, भाई मेरी सबसे अच्छी समझ में और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ और उस सबसे जो मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ, उन तीनों मोहरों का यही सच्चा अर्थ है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये वो प्रकाशन है जो वो मुझे देता है और मुझे दिया है इसका प्रकाशन। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। कल आने वाली रात्रि में हम पीले घुड़सवार को लेंगे, और इस समय मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है कि ये सच बात है। मैं इसके विषय में एक भी बात नहीं जानता, नहीं। मैंने अपने पुराने संदर्भ को देखा जो वर्षों पहले मेरे पास था। मैंने थोड़ी देर पहले भाई ग्राम स्नेलिंग को देखा था, हो सकता है वो बाहर चले गए, परंतु मुझे याद है जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था पहले, मैंने देखा जानने के लिए कि वर्षों पहले मैंने क्या कहा। एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देख रहा था, मैंने वे सारे चार घुड़सवार एक ही बार में ले लिए। मैंने कहा एक सफेद घोड़ा जो कि आरंभ की कलीसिया थी, संदेह नहीं। मैंने एडवेंटिस्टों की पुस्तक में से पढ़ा और मैंने वहाँ कुछ पढ़ा। मैंने कहा कि ये आरंभ की कलीसिया है जो जीतते हुए आगे बढ़ गई, और अगला काला घोड़ा था। मैंने कहा मैं भूल गया कि मैंने काले घोड़े को क्या कहा था। मैंने कहा या बल्कि लाल घोड़ा। मैंने कहा उस घोड़े का संभवतः अर्थ है कि मार्ग में कठिनाइयां हैं, और इसका ये अर्थ है बहुत से शुद्ध होने को हैं या कुछ इसी प्रकार से। मैंने कहा संभवतः बहुत सारे युद्ध होंगे। मैंने कहा यही जो होगा। और फिर मैंने कहा वो पीला घोड़ा या वो काला घोड़ा। मैंने कहा इसका अर्थ कि संभवतः कि पृथ्वी पर एक काला समय आए जब सारे सितारे चमकना बंद कर दें, सूरज नीचे चला जाएगा, चांद अपना उजियाला नहीं देगा। मैंने कहा संभवतः यही इसका अर्थ है। मैंने कहा पीला घोड़ा, इसका अर्थ बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। अब मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, परंतु तब ये वो मेरा इसका अनुवाद था, क्योंकि मैंने इसे सबसे अच्छा जो मैं ले सका यहाँ इस पर प्रचार मंच पर। परंतु ओ मैंने लगभग कुछ कहा, ठीक है, आप देखेंगे, बस इस पर ध्यान दें, देखिए। अब ओ क्या हम इस घड़ी के लिए आनंदित नहीं जिसमें कि हम जी रहे हैं? जब हम इन सब बातों को बढ़ते देखते हैं, मैं सोचता हूँ
राज टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, हेंगे अटक गए, ओ पिछड़े अपनों में लौट आओ, छुटकारे का दिन निकट है, भय से लोगों के हृदय रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे चिराग छांटे और साफ हैं, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। ओ प्रभु, झूठे भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य से का इनकार कर रहे हैं कि यीशु वो मसीह हमारा परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? परंतु हम वहाँ चलेंगे जहाँ चेले चले, क्योंकि छुटकारे का दिन निकट है। मनुष्यों के हृदय भय से रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, अपने चिरागों को छांट और साफ कर लो, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। क्या ये तुम्हारा आश्चर्यजनक नहीं है? और सांझ के समय उजियाला होगा, निश्चय ही आप महिमा का मार्ग पाएंगे, जल के मार्ग से ही आज उजियाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में गढ़ जाओ, युवा और बूढ़े अपने पाप से प्रायश्चित कर लो, पवित्र आत्मा निश्चय ही प्रवेश करेगा। सांझ का उजियाला भीतर आ गया है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है, वो वचन है। ओ प्रभु, आश्चर्यजनक, जल्दी ही मेमना अपनी दुल्हन को सदा अपने बराबर में ले लेगा। स्वर्ग की सारी सेना एकत्र होगी। ओ ये महिमा वाला दृश्य होगा। सारे संत लोग बेदाग सफेद और यीशु के साथ वे अनंत उत्सव में होंगे। आओ खाओ, स्वामी बुलाता है, आओ और खाओ। आओ आप यीशु की मेज पर सारे समय उस समय हो सकते हैं। वो जिसने भीड़ को खिलाया, पानी को दाखरस बनाया, भूखों को वो अब बुलाता है, आओ और खाओ। ओ आओ और खाओ, स्वामी बुलाता है, आओ और खाओ। वचन का भोजन करो। वो जिसने भीड़ को खिलाया, पानी को दाखरस बनाया, भूखों को अब वो बुलाता है, आओ और खाओ। ओ प्रभु, क्या आप भूखे हैं? धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? वो कुंजी कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, आप जानते हैं। अब आइए हम खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने आप को उस पर प्रकट करें। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। ठीक है, अब सब मिलकर। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। बस वास्तव में श्रद्धा में रहें। यहाँ हमारे पास अनुवाद है, भाई हिगनबोथम। मैं नहीं जानता कि वो अब आज रात्रि यहाँ है या नहीं। हमें मालूम करना चाहते हैं कि उसने हमसे क्या कहा। बस एक मिनट प्रतीक्षा करें, यहाँ इधर इधर। निश्चय ही प्रभु की महिमा हो। मेरा विश्वास परमेश्वर में ऊंचा उठ गया है। आप उससे प्रेम करते हैं। आज रात्रि आपने पूरे हृदय के साथ ओ उसकी महिमा करें और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद। हम कैसे आपको महिमा देते हैं, प्रभु अपने सारे हृदय से परमेश्वर की महिमा हो, बस उसको महिमा दें। आप सब लोग, परमेश्वर आपके साथ हो।
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.